अच्छा भाई देखिए भाई, किताब पर वअला आलिही व असहाबिही अल मुतअद्दिबीन बि आदाबिही अम्मा बाद। गुज़श्ता सबक में अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही की मुफस्सल तकरीर गुजर गई भाई, और इसी तरह आज के दर्स में है वअला आलिही व असहाबिही, इसमें से भी आलिही का बयान हो चुका है भाई। मैंने आपको बतलाया था कि आल जो है वो किसी शख्स के जो मुत्तबईन हैं और जो उसके मुतअल्लिकीन हैं उनको आल कहा जाता है। और आल की असल के बारे में दो कौल हैं भाई। एक कौल जो है इमाम सीबवे का है, वो फरमाते हैं कि आल असल में अहलुन था, कि आल की असल आहल है, और दलील क्या है कि इसकी तस्गीर उहैल आती है और अत तस्गीर व तकसीर यरुद्दान इल अशिया इला उसूलिहा, तो इस तरह फिर ये अलुन हुआ और फिर सानी हमजा को अलिफ से बदल दिया गया तो आलुन हुआ। जैसे कि मा उन उसकी असल मा हुन थी भाई, फिर हा को किससे बदल दिया गया हमजा से, और दलील इसकी यह है कि इसकी तस्गीर जो है मा उनकी मुवैहुन आती है और जमा मियाहुन आती है, और जाप्ता है अत तस्गीर व तकसीर यरुद्दान इल अशिया इला उसूलिहा, कि चीजों को उनकी असल की तरफ लौटा देते हैं, तस्गीर और जमा तकसीर भाई। तो लिहाजा मा उनकी जमा मियाहुन आती है और इसकी तस्गीर मुवैहुन आती है, वहां पर हमजा नहीं है, हा मौजूद है, जिससे पता चलता है कि मा उन भी असल में क्या था माहुन। तो जैसे यहां पर हा को हमजा से बदल दिया गया, इसी तरह अहल उनकी हा को भी हमजा से बदल दिया गया, तो यहां पर भी दलील उनकी भी वही तस्गीर ही है यहां। जबकि दूसरा कौल जो है वो इमाम कीसाई का है जो कुर्राए सबा में से हैं और जलीलुल कदर इमाम गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि आल की असल अवलुन है, तो फिर वाव मुतहर्रिक माकबल फतहा होने की वजह से वाव को अलिफ से बदला तो आलुन हुआ आलुन। उसके बाद मैंने आपको बतलाया था कि आले नबी से कौन मुराद हैं भाई, और इसमें कई अकवाल जिक्र किए थे कि उलमा के इस बारे में कोई 10-15 या इससे भी ज्यादा अकवाल हैं। बाज उलमा फरमाते हैं कि आले नबी से मुराद जो हैं बनू हाशिम में हुजूर अलैहि सलाम के जो रिश्तेदार हैं वो मुराद हैं। बाज फरमाते हैं कि बनू हाशिम और बनुल मुत्तलिब के अंदर जो हुजूर के रिश्तेदार हैं वो मुराद हैं। मैंने आपको बतलाया था कि हाशिम हुजूर अलैहि सलाम के परदादा हैं और मुत्तलिब उनके भाई हैं, और अब्दुल मुत्तलिब ये हाशिम के बेटे हैं भाई, ये हुजूर के दादा हैं। तो बनू हाशिम और बनुल मुत्तलिब में हुजूर के जो रिश्तेदार हैं, जबकि बाज उलमा फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के मुतलकन जो भी रिश्तेदार हैं वो सब आल के अंदर दाखिल हैं, जबकि बाज उलमा फरमाते हैं कि बनू गालिब के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के जो रिश्तेदार हैं, बनू गालिब ये हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा परदादा ऊपर 7-8 पुश्तें ऊपर गुजरे हैं भाई, तो ये बनू गालिब के अंदर जितने भी आ गए वो सारे आल के अंदर दाखिल हैं। जबकि बाज उलमा फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की आल से मुराद कबीले कुरैश वाले हैं, जबकि बाज फरमाते हैं कि आल से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम की अजवाज मुतहरात हैं, और बाज फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की अजवाज मुतहरात और हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद ये सब क्या है हुजूर की आल हैं। जबकि एक कौल ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जो औलाद है सिर्फ वो आल में दाखिल है, और एक कौल ये है कि हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुम ये हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की आल, और एक कौल ये है कि उम्मती जो हैं जो अहले ईमान हैं वो हुजूर अलैहिस्सलाम की आल हैं, जबकि एक कौल ये है कि जो मुत्तकी मोमिनीन हैं वो हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की आल, जबकि एक कौल ये है कि उलमाए सालिहीन जो हैं उम्मत में से नेक उलमा वो हुजूर अलैहिस्सलाम की आल हैं, और एक कौल ये है कि सालिहीन उलमा भी नहीं बल्कि जो सिर्फ मुज्तहिदीन उलमा हैं जो इज्तिहाद के मकाम पर फाइज हैं यानी बड़े किबार उलमा सिर्फ वो हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की आल में। तो ये बहुत सारे अकवाल हैं, और उलमा फरमाते हैं कि ये मौका महल के मुताबिक देखा जाएगा कि आल से कौन सा माना मुराद है। और मैंने बताया था यहां पर यह मकाम दुआ है और दुआ में बेहतर यह है कि तामीम हो, तमाम अहले ईमान जो हैं इस उम्मत के वो उसमें दाखिल हो जाएं। तो आल से क्या मुराद लिया जाए? हुजूर अलैहिस्सलाम के तमाम उम्मती जो अहले ईमान हैं भाई। और मैंने फिर आपको यहां यह भी बताया था कि लफ्ज आल और अहल के बारे में वाली साहब रहमहुल्लाह की एक किताब है अन्नहजु सहल इला मबाहिसिल आल वल अहल, जिसमें इसकी बड़ी मुफस्सल मबाहिस हैं और वहां आल और अहल के दरमियान तकरीबन 40 फर्क जिक्र किए हैं भाई, 40 फर्क। उनमें से एक फर्क यह है कि ये आल का लफ्ज सिर्फ मुअज्जज लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, कोई बादशाह है या नबी है या इस तरह जो बड़े ही इंतहा दर्जे के मुअज्जज हों, चाहे दीनी एतबार से, चाहे दुनियावी एतबार से, चाहे दोनों एतबार से, उनके लिए यह आल का लफ्ज इस्तेमाल होता है। बाकी आम ज़ईफ मिस्कीन लोगों के लिए कि आले ज़ईफ कहा जाए या आले मिस्कीन कहा जाए, ये वगैरह ये इस्तेमाल नहीं होता, जबकि अहल का लफ्ज आम है, सबके लिए इस्तेमाल होता है। नीस आल का लफ्ज सिर्फ ज़वील उकूल मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, जो आलम हो, ज़वील उकूल में से हो भाई, और मुअन्नस के लिए इस्तेमाल नहीं होता, जबकि अहल का लफ्ज आम है, वो मुजक्कर मुअन्नस सब के लिए इस्तेमाल होता है। और इसी तरह और भी कुछ फुरूक मैंने जिक्र किए, बात समझ में आ गई। उसके बाद आगे देखिए वअला आलिही वअस्हाबिही, वअस्हाबिही हुजूर अलैहि सलाम के अस्हाब भाई साथी यानी के सहाबा मुराद हैं। कौन मुराद हैं? सहाबा। अस्हाब जमा है या तो साहिब की, जैसे शाहिद की जमा अशहाद, इसी तरह साहिब की जमा अस्हाब, या ये जमा है सहबुन की, सहब की जमा अस्हाब, जैसे कि नहर की जमा अनहार भाई। तो ये साहिब की जमा है या सहब की जमा, तो ये किसकी जमा है? अस्हाब किसकी जमा? सहब की या साहिब की, जैसे शाहिद की जमा अशहाद और नहर की जमा अनहार भाई। एक लफ्ज आता है नहार, नहार दिन को कहते हैं, लैल रात को कहते हैं, नहार की जमा क्या आएगी भाई? नहार, अनहार तो नहर की जमा है, नहार याद रखो, नहार दिन को कहते हैं, इसकी जमा नुहुर आती है, नुहुर, नून पर भी जम्मा, हा पर भी जम्मा, नुहुर, और इसी तरह अनहुर भी, नुहुर भी और अनहुर भी नहार की जमा है भाई। तो अस्हाबी ही, देखो अस्हाबी ही की हाजमी राजे है नबी को भाई, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अस्हाब हैं। तो साहिब का माना होता है साथी, साथी, तो यहां निस्बत हो गई हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जो साथी हैं, और वो कौन हैं? सहाबा हैं। तो साहिब का लफ्ज आम है, किसी का भी साथी हो उसको साहिब कहा जा सकता है, लेकिन बिलखसूस जो हुजूर के साथी थे उनके लिए लफ्ज है सहाबी भाई, सहाबीयुन या के साथ, सहाबी। सहाबी किसे कहते हैं? वो शख्स जिसने ईमान की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की हो और ईमान की हालत में ही उसका इंतकाल हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? सहाबी भाई, और उसकी जमा सहाबा आती है, सहाबतुन की, तो सहाबी की जमा सहाबा आती है भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें सहाबा की मोहब्बत नसीब फरमाई है। जानते हो ये अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत आपको नसीब फरमाई है, आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। उन लोगों को देखो जो सहाबा को बुरा भला कहते हैं भाई, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथी हैं और वो उनको बुरा भला कहते हैं भाई, बुरा भला कहते हैं। तो सहाबा, सहाबा तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने दीन की एक एक बात हम तक पहुंचाई, एक एक सुन्नत को, हुजूर अलैहिस्सलाम के एक एक तरीके को हम तक पहुंचाया भाई। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफत का जमाना था, बूढ़े हो चुके हैं, कोई 80 साल उम्र हो चुकी है, और एक दिन वुजू फरमाया और वुजू के बाद खड़े हुए तो हल्का सा मुस्कुराए, तो साथी जो पास ही थे उन्होंने अर्ज किया कि या अमीरुल मोमिनीन, आज तो आपने वो काम किया जो इससे पहले कभी नहीं किया। देखो साथियों की नजर भी कितनी गहरी थी, हालांकि थोड़ा सा मुस्कुराए हल्का सा, लेकिन उसको भी उन्होंने तवज्जो से देखा और हैरान हुए कि ये पहले कभी आपने नहीं किया इस तरह। तो फरमाने लगे कि हां कि एक मरतबा इसी तरह मेरे महबूब आजम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमाने के बाद खड़े हुए थे तो इसी तरह हल्का सा मुस्कुराए थे, मुझे वो बात याद आ गई तो मैंने सोचा कि हुजूर की इस सुन्नत पर भी मैं अमल कर लूं। तो देखो सहाबा ने एक एक बात हम तक पहुंचाई भाई, हालांकि कितनी बारीक और छोटी सी बात है लेकिन एक एक बात को हम तक पहुंचाया। सहाबा बाकायदा लोगों को जमा करके उनके सामने हुजूर अलैहि सलाम के अफ़ाल करते थे कि हुजूर अलैहि सलाम इस तरह वुजू वगैरह फरमाते थे भाई, तरीका लोगों को सिखाते थे। देखो ये जो हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया मैंने बतलाया, देखो इससे एक और बात मालूम हुई कि वो हल्का सा मुस्कुराए तो उस पर भी साथियों ने पूछ लिया कि हजरत क्यों मुस्कुराए। मालूम हुआ हमारे ये सहाबा कैसे लोग थे, एक जर्रा भी लायानी और बेकार काम नहीं करते थे। अगर बेकार और लायानी काम करते तो फिर कभी कोई पूछता ही ना भाई, उनके हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती थी, कोई सबब होता था। चुनांचे थोड़ी सी बात भी मामूल से हट कर देखी तो फौरन साथियों ने पूछ लिया कि हजरत आप क्यों मुस्कुराए हैं। तो ये है सहाबा भाई, सहाबा का जिक्र भी करो तो दिल में अजीब लज्जत महसूस होती है भाई। और हम अहले सुन्नत वल जमात हैं भाई, अहले सुन्नत वल जमात। अहले सुन्नत वल जमात का क्या माना, यानी कि ये कि हम सुन्नत पर अमल करते हैं। क्या करते हैं, सुन्नत पर अमल करते हैं, यानी हुजूर अलैहि सलाम के बतलाए हुए तरीकों पर। और वल जमात, जमात से सहाबा की जमात मुराद है, यानी हुजूर के तरीकों पर भी उस तरह से अमल करते हैं जिस तरह सहाबा ने समझकर हमें बताया भाई। एक ये है आजकल लोग बैठे हैं अहादीस का मुताला करते हैं और खुद जो अकल उनको समझा दे उसके मुताबिक उसका खुद माना निकाल लेते हैं कि इसका यह माना है, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का यह तरीका नहीं। अहले सुन्नत वल जमात यह देखते हैं कि सहाबा ने हुजूर के इस कौल का क्या माना लिया था और सहाबा ने इस पर किस तरह अमल किया था। यह है असल तरीका, यह है। वरना तो बाज़ औक़ात एक बात में कई कई इहतमाल निकल आते हैं लेकिन जब सहाबा का दामन दरमियान में होगा तो इंसान गुमराही से महफूज रहेगा, और जब सहाबा का दामन दरमियान से छूट गया निकल गया तो फिर बेशक आपके पास अहादीस भी हो, अव्वल तो सवाल यह कि अहादीस पहुंची कैसे आप तक अगर सहाबा का वास्ता ही निकाल दो। और दूसरा यह कि अगर आप खुद अपना माना निकालोगे तो कोई एक हदीस का एक माना निकालेगा, कोई दूसरा माना निकालेगा, जैसे आजकल आप देख रहे हैं भाई कि जल्लू फाजल्लू, खुद भी गुमराह होते हैं लोग और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। तो हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, सुन्नत पर अमल करते हैं लेकिन उसी तरीके से जिस तरह उसको सहाबा ने समझा और उस पर अमल किया। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द थे, समझ में आया। और उस्ताद जितना अजीम होता है शागिर्द भी उतने ही अजीम होते हैं, और ये तो सरवरे कौनैन थे, कायनात की अजीम तरीन शख्सियत भाई, और जिनका दर्जा तमाम मखलूकात से बढ़कर है भाई। तो यकीनन इनके शागिर्दों का जो मकाम होगा वो भी हमारे तसव्वुर से बाला है भाई। उलमा फरमाते हैं कि अदना से अदना सहाबी का भी इतना ऊंचा मकाम है कि दुनिया का बड़े से बड़ा वली भी अदना से अदना सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। और सहाबी अदना से अदना सहाबी का यह मकाम क्यों है, क्योंकि उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की ज्यारत की है, और जिसने हुजूर की एक लम्हे के लिए ज्यारत कर ली उसका इतना ऊंचा मकाम हो गया कि बड़े से बड़ा वली जो है उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता। तो वो सहाबा जरा तसव्वुर तो करो जिन्होंने तमाम जिंदगियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारी, जिन्होंने हुजूर के लिए सारा कुछ कुर्बान कर दिया, जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत में अपने रिश्तेदारों माल और दौलत बीवी बच्चों किसी की परवाह नहीं की, उन सहाबा का क्या मकाम होगा हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें सहाबा की मोहब्बत नसीब फरमाई है। तो आपको ये इतनी अजीम नेमत अल्लाह ने आपको नसीब फरमाई है, इसके लिए तो बतौर शुक्राने के दो नफल कम अज कम आपको पढ़ने चाहिए कि अल्लाह ने आपको अजीम फजीलत नसीब फरमाई भाई। अलमर उमा मन अहब्बा, आदमी उन्हीं के साथ होगा जिनके साथ वो मोहब्बत रखता है। तो अल्लाह आखिरत में हमें सहाबा के साथ जमा फरमा दे, अल्लाह आखिरत में हमें भी सहाबा के साथ बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमा दे। तो देखिए किताब पर व अला आलिही व असहाबिही, और रहमत नाजिल हो हुजूर अलैहि सलाम की आल पर व असहाबिही और उनके सहाबा पर। मैंने बतलाया कि साहिब जो है वो साथी को कहते हैं, और बिलखुसूस हुजूर अलैहि सलाम के जो साथी थे उनको सहाबी कहा जाता है। जमा इसकी सहाबा है भाई, सहाबा है। और यहां पर असहाबिही, असहाबिही की हा जमीर नबी को राजे, तो नबी के साथी, इससे पता चला कि इससे कौन मुराद हैं, सहाबा मुराद हैं भाई, सहाबा मुराद हैं। अल मुतअद्दिबी नबी आदाबिही, तअद्दुब का माना है अदब और अखलाक सीखना। तअद्दुब का क्या माना, तअद्दब या तअद्दबु, तअद्दुबन क्या माना, अदब और अखलाक सीखना। अल मुतअद्दिबी नबी आदाबिही, ये आदाबिही की हा ज़मीर फिर नबी को राजे है, वो सहाबा जो अखलाक सीखने वाले हैं नबी के, यानी कि नबी से आदाब सीखने वाले हैं, अखलाक सीखने वाले हैं। यह सिफत है किसकी, सहाबा की भाई। वअस्हाबिहिल मुतअद्दिबी नबी आदाबिही, वो सहाबा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब को और अखलाक को सीखने वाले हैं, उसको अपनाने वाले हैं, उस पर अमल करने वाले हैं। यूं तर्जमा कर लो, वह असहाबी हिल मुतअद्दिबीन बी आदाबिही, और वो सहाबा अल मुतअद्दिबीना जो अपने आप को संवारने वाले हैं, भी आदाबिही हुजूर अलैहि सलाम के आदाब के साथ, या जो मुत्तसिफ हैं हुजूर अलैहि सलाम के आदाब के साथ, आपके अखलाक के साथ, कि उनको सहाबा ने अपनाया भाई। यहां तक बात समझ में आ गई। अम्मा बाद भाई, अम्मा मुतजमिन है माने शर्त को भाई, और इसीलिए आगे फहाजिही पर फा लाई गई भाई, क्योंकि शर्त के जवाब में क्या आती है, फा आती है। अम्मा बादू में ये बादू जो है मबनी अलज़म भाई। कबलू और बादू के बारे में एक नुक्ता जो आप पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी मैं मजीद वजाहत कर दूं आपके लिए भाई। याद रखो, ये जो कबलू और बादू हैं ये मुजाफिले चाहते हैं। बादू का माना बाद में भाई, किसके बाद, जैद के बाद, अमर के बाद, बकर के बाद, या एक दिन के बाद, दो दिन के बाद, चार दिन के बाद, आगे मुजाफिले चाहिए भाई। इसी तरह कबल का माना पहले भाई, किससे पहले, जैद से पहले या अमर से पहले या एक हफ्ते से पहले वगैरह, तो इसके लिए भी आगे हमेशा क्या चाहिए, मुजाफिले चाहिए। तो कबल और बादू हमेशा किसका तकाजा करते हैं, मुजाफिले का। बादू का माना बाद में भाई, किसके बाद, वो आगे मुजाफिले चाहिए। कबलू का माना पहले भाई, किससे पहले, वो आगे मुजाफिले चाहिए। कबला जैदिन मसलन, जैद से पहले, तो इनके लिए हमेशा मुजाफिले चाहिए। और इनके इस्तेमाल की तीन सूरतें हैं। एक सूरत यह कि वह मुजाफिले कभी इबारत में जिक्र होगा। दूसरी सूरत यह कि वह मुजाफिले इबारत से तो हजफ कर लिया, लेकिन नीयत में अभी भी वह मुराद है, उसका इरादा है। और तीसरी सूरत यह कि लफ्जों से भी उस मुजाफिले को खत्म कर दिया और नीयत से भी खत्म कर दिया। तवज्जो है। तो तीन सूरतें हैं कबलू और बादू के इस्तेमाल की। इनका मुजाफिले या लफ्जों में जिक्र होगा, या लफ्जों में तो जिक्र नहीं होगा लेकिन नीयत में मुराद होगा, और या वो नसिया मनसिया होगा, यानी भूला बसरा, यानी है ही नहीं, था ही नहीं, खत्म कर दिया गोया, यानी ऐसा इस्तेमाल गोया इसके लिए मुजाफिले चाहिए ही नहीं। तवज्जो है। तो एक सूरत क्या, मुजाफिले इनका इबारत में जिक्र होगा। दूसरी सूरत क्या, इबारत से तो हजफ कर दिया लेकिन नीयत में अभी भी है। तीसरी सूरत के इबारत से भी खत्म किया और नीयत से भी खत्म कर दिया गोया इनके लिए मुजाफिले चाहिए ही नहीं, नसिया मनसिया कर दिया। तो तीन सूरतें हैं इस्तेमाल की, और इनमें से दो सूरतों में यह मौरब है और एक सूरत में मबनी है। जब वो सूरत जिसमें मुजाफिले इसका लफ्जों में मौजूद हो तो इनकी जरूरत पूरी हो रही है, लिहाजा इस सूरत में ये मौरब हैं। क्या हैं, जरूरत पूरी हो रही है, इसके लिए मुजाफिले चाहिए था और वो इबारत में जिक्र है। तीसरी सूरत जो थी जिसमें मुजाफिले इबारत में भी जिक्र नहीं और नीयत में भी नहीं है, तो इसमें भी गोया इसके लिए मुजाफिले को नसिया मनसिया कर दिया कि इसके लिए चाहिए ही नहीं कोई मुजाफिले, जब चाहिए ही नहीं तो भी मुअरब है, गोया इसका कोई नुकसान हुआ ही नहीं। लेकिन एक सूरत जिसमें मुजाफिले लफ्जों से तो हजफ कर दिया लेकिन नीयत में अभी भी है, इस सूरत में यह मबनी होगा। क्या होगा? मबनी होगा भाई, मबनी होगा। जैसे देखो मिसाल से वजाहत होगी। मसलन मैं आपसे कहता हूं जाअनी जैदन बाद अमरीन, जाअनी जैदन बाद अमरीन। देखो बाद अमरीन, बाद के बाद क्या रहा है? मुजाफिले। जैद किसके बाद आया? अमर के बाद आया। बाद के लिए मुजाफिले चाहिए था और इसकी जरूरत पूरी हो रही है, लिहाजा ये मुअरब है और ये ज़र्फ है, और ज़र्फ क्या होता है? मंसूब मफूलफी होता है। इसीलिए मैंने क्या कहा? जानी जैदौन बादा आमरीन, बादा आमरीन। तो जरूरत पूरी है, मुआरब है और इस पर नसब आ रहा है। और एक सूरत ये कि आप इसको लफ्जों से हजफ कर दें मुजाफिले को लेकिन नीयत में अभी भी मुराद है। पहले का क्या तर्जमा हुआ? जानी जैदौन बादा आमरीन, क्या तर्जमा हुआ? जैद अमर के बाद आया। दूसरी सूरत कि अमर को लफ्जों से हजफ कर दें लेकिन नीयत में मुराद हो। इस सूरत में चूंकि बादू के लिए तो मुजाफिले चाहिए और इसका नुकसान हो गया, आपने लफ्जों से क्या कर दिया? मुजाफिले को खत्म कर दिया, अगरचे नीयत में अभी भी मुराद है, तो इस सूरत में यह मबनी बन जाएगा। और फिर यूं पढ़ेंगे जाअनी जैदुन बादू अमर, नहीं अमर को हमने लफ्जों से हजफ कर दिया, अब यह मबनी बन गया। बादू क्या है? मबनी है, मबनी अला ज़न। हां महल्लन ये अभी भी मंसूब है क्योंकि मफूलफी है भाई, क्या है? और मबनी पर एराब कैसे आता है? महल्लन आता है, तो इस वक्त ये है तो मबनी, मबनी अला ज़म है लेकिन महल्लन क्या है? मंसूब है, मफूलफी है। जाअनी ज़ैदुन बादू, जी तर्जमा क्या होगा? जी जैद आया बाद में, नहीं नहीं अमर लफ्जों से तो उड़ा दिया है, नीयत में अभी भी है, तर्जमा वही होगा जैद अमर के बाद आया। जाअनी जैदुन बादू, नीयत में अभी भी है अमर, तो तर्जमा क्या होगा? जैद अमर के बाद आया। और तीसरी सूरत यह है कि अमर को आप लफ्जों से भी उड़ा दें और नीयत से भी खत्म कर दें तो गोया अब बादू का कोई नुकसान नहीं हुआ, बादू का कोई नुकसान नहीं हुआ, इसके मुजाफिले को नसिया मनसिया कर दिया, गोया ना ये मुजाफिले चाहता है न लाने की जरूरत है, तो इसका कोई नुकसान नहीं, तो इस सूरत में भी ये मुअरब होगा। तो कैसे पढ़ेंगे? जाअनी जैदुन बादन, जाअनी जैदुन बादन। बादन क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि मफूलफी है, नसब आएगा और आगे मुजाफिले तो है नहीं, तनवीन आएगी, मुअरब है भाई, बात समझ में आ गई? तो जाअनी जैदुन बादन, और तर्जमा क्या? नहीं नहीं अब अमर नीयत में भी नहीं है, मुजाफिले को इसके लिए चाहिए ही नहीं, बस जाअनी जैदुन बादन, जैद बाद में आया, जैद बाद में आया, फर्क समझ में आ गया। तो आज तक आप सुनते थे कि बादू के इस्तेमाल की तीन सूरतें हैं, मैंने खूब वजाहत कर दी कि जब लफ्जों से खत्म हो और नीयत से भी खत्म हो तो तर्जमे में नहीं लाएंगे, लेकिन अगर लफ्जों से खत्म है और नीयत में है तो फिर तर्जमे में भी उसको लेकर आएंगे भाई। तो कहते हैं अम्मा बादु, बाद के मैंने तीन अहवाल जिक्र कर दिए, तो यहां पर है अम्मा बादु फहादिही फवाइदु वाफिया। तो यहां अम्मा बादु ये मबनी अला ज़म है, इससे आपको क्या पता चला? कि इसका मुजाफ इले नीयत में है, इसका मुजाफ इले नीयत में है, इसके लिए तो मुजाफ इले चाहिए था और वो मुजाफ इले लफ्जों से तो खत्म कर दिया और नीयत में अभी भी है, तो इसका नुकसान हुआ। तो तलाफी के तौर पर क्या किया गया? इसको जम्मे की जम्मे पर इसको मबनी बना दिया गया। और तो ये अम्मा बादू, तो अब क्या मुजाफिले है यहां पर? अम्मा बादल हमदी व सलाती, तो हमदो सलात के बाद फहादी ही फवाइद वाफिया, ये कामिल फायदे हैं। तो ये मबनी अला ज़म है और महल्लन, महल्लन ये मंसूब होगा क्योंकि ज़र्फ़ है और मबनी पर एराब कैसे आता है? महल्लन। हुआ रजुलन, हुआ क्या है मरफू महलन, महलन क्यों, क्योंकि मबनी है। तो यहां भी अम्मा बादू, ये बादू क्या है मबनी है, मबनी अला जम, लेकिन है तो मफूल फी, तो क्या कहेंगे ये मंसूब महलन है, क्योंकि मफूल फी क्या होता है मंसूब, तो मबनी अला जम है लेकिन मंसूब महलन है भाई। फहादिही फवाइदु वाफिया, भाई इबारत पर गौर कर रहे हैं भाई, हाजिही इसमें इशारा है वाहिद मुअन्नस का, और आगे आ रहा है फवाइद, फवाइद जमा है फाइदतुन की जमा, तो हाजिही इसमें इशारा, ये मुबतदा है और ये इशारा है फवाइद की तरफ, और वो मुशारुन इले है और खबर है भाई, ये फायदे हैं भाई, ये कुछ फायदे हैं। तो जमा के लिए हाजिही वाहिद मुअन्नस इसमें इशारा लेकर आए, मैंने आपको बतलाया था तरकीब के दौरान कि जमा बतावील जमातुन किसके हुक्म में है, वाहिद मुअन्नस के हुक्म में है, इसलिए इस यहां पर भी आप देख रहे हैं कि हाजिही वाहिद मुअन्नस का इसमें इशारा लेकर आए जमा के लिए, तो ये बतावील जमातुन के है। फवाइदु वाफिया, वाफी का माना है कामिल, पूरा पूरा, तो फवाइद वाफिया वो फवाइद जो कामिल हैं, वो फवाइद जो यानी कामिल दर्जे के फवाइद हैं। तो यहां भी आप देखिए फवाइद है मौसूफ और वाफियतुन उसकी सिफत है, और मौसूफ जो है वो जमा है और उसकी सिफत वाफियतुन वाहिद मुअन्नस लाई गई, और ये भी उसी तरह कि ये जमा क्या है बतावीले जमातुन वाहिद मुअन्नस के हुक्म में है, लिहाजा इसकी सिफत क्या लाई गई वाहिद मुअन्नस लाई गई। फिर फहादिही फवाइदु वाफिया, ये कामिल दर्जे के फायदे हैं, ये कामिल फायदे हैं, ये इससे मुराद शरह जामी है, ये जो मुल्ला जामी की किताब जो हम पढ़ रहे हैं ये इसके बारे में मुल्ला जामी फरमा रहे हैं कि ये क्या हैं कामिल दर्जे के फायदे हैं, बिहल मुश्किलातिल काफिया, काफिया की मुश्किलात हल करने में, ये काफिया की मुश्किलात हल करने में कामिल दर्जे के फायदे हैं, यानी इससे काफिया की मुश्किलात हल हो जाएंगी, ये ऐसी शरह मैंने लिखी है भाई। तो फवाइद से क्या मुराद है, ये शरह शरह जामी मुराद है। अब याद रखो ये जो हाजी ही है इसको वजा किया गया है महसूस और मुबसर चीज की तरफ इशारा करने के लिए, हाजी ही इसमें इशारा है, इसके जरिए इशारा किया जाता है किसी ऐसी चीज की तरफ जो महसूस हो मुबसर हो आंखों से दिखाई दे, आंखों से दिखाई दे। आपने पढ़ा होगा और किताबों के अंदर के इंसान को अल्लाह ने पांच हवास दिए हैं भाई, हवासे खमसा जाहिरा, और वो क्या हैं, एक आंखें हैं जिनके जरिए वो चीजों को देखता है, एक कान है जिनके जरिए वो आवाजों को सुनता है, एक नाक है जिसके जरिए वो चीजों को सूंघता है, एक जुबान है जिसके जरिए ये चीजों को चखता है, और एक हिस जो है वो छूने की है, छूने की, और ये पूरे बदन में फैली हुई है, इसके जरिए इंसान जो है किसी नरम या सख्त चीज का उसको पता चलता है, कोई चीज खुश्क है या तर है, हमवार है या खुरदरी है वगैरह, इन चीजों का पता चलता है, और इसको कुव्वत लामिसा कहते हैं, लम्स यानी छूने की कुव्वत। तो पांच कुव्वतें अल्लाह ने इंसान को नसीब फरमाई हैं, एक कुव्वत बासिरा है देखने की कुव्वत, एक कुव्वत लामिसा है छूने की कुव्वत, एक कुव्वत सामिया है सुनने की कुव्वत, एक कुव्वत जायका है जायके की कुव्वत, और एक कुव्वत शाम्मा है सूंघने की कुव्वत। तो ये पांच कुव्वतें अल्लाह ने इंसान को नसीब फरमाई हैं, कौन कौन सी, कुव्वत बासेरा, कुव्वत लामिसा, कुव्वत सामिया, कुव्वत जायका और कुव्वत शाम्मा, और इन पांच चीजों के जरिए इंसान मुख्तलिफ चीजों का इलम हासिल करता है, देखने से उसको जो चीजें सामने मौजूद हों वो दिखाई देती हैं, उनका इलम उसे हासिल होता है कि मसलन ये दरख्त है, ये पत्थर है, ये पहाड़ है, ये चीजें उसको दिखाई देती हैं। कुव्वत सामिया के जरिए वो मुख्तलिफ किस्म की आवाजों का इलम उसे हासिल होता है कि मसलन ये जैद की आवाज है, ये गाय की आवाज है, ये गाड़ी की आवाज है, इसका इलम उसको कुव्वत सामिया के जरिए होता है। कुव्वत जायका के जरिए उसको मुख्तलिफ किस्म के जायकों का पता चलता है कि कोई चीज मीठी है या फीकी है या कड़वी है या नमकीन है या तुर्श है वगैरह भाई। और कुव्वत शामा जो है सूंघने की कुव्वत, वो जो अल्लाह ने नाक में रखी है, इसके जरिए इंसान को मुख्तलिफ किस्म की जो बू है उनमें उनका इलम उसको हासिल होता है, किसी चीज की अच्छी बू है, किसी चीज की खराब बू है, कोई फलां किस्म की खुशबू है, कोई फलां किस्म की खुशबू है, इसका पता किससे चलेगा? कुव्वत शामा से। और कुव्वत लामिसा जो है ये याद रखिए पूरे बदन में फैली हुई है, तो इस बदन के किसी हिस्से पर भी कोई चीज लगे आपको फौरन महसूस हो जाता है कि कोई चीज बदन पर लगी है, और सख्त है या नरम है, खुश्क है या तर है, हमवार है या खुरदरी है। तो ये पांच कुव्वतें हैं, इनको हवासे खमसा जाहिरा कहते हैं, और इनके जरिए जिन चीजों का हमें इलम होता है उनको महसूसात कहते हैं। तो आवाज भी किस में से है? महसूसात में से। जायका भी किस में से? महसूसात में से। और जो चीजें हमें दिखाई देती हैं ये भी किस में से? महसूसात में से। जिन चीजों का पता हमें छूने से चलता है वो भी क्या है? महसूसात हैं। और जिन चीजों का पता सूंघने से चलता है वो भी क्या है? महसूसात। तो ये सारी महसूसात हैं। लेकिन आम लोगों के उर्फ में जब महसूस का लफ्ज जिक्र किया जाए तो इसका माना होता है मुबसर के, यानी जो चीज आंखों से दिखाई दे, जो चीज। तो कभी आप मंतिक वगैरह की किताबें पढ़ेंगे वहां महसूसात का लफ्ज आएगा, तो वहां महसूसात का माना करना है वो चीजें जो हवासे खमसा जाहिरा से मालूम हो। तो उसमें आवाजें भी दाखिल हो गई, उसमें खुशबू वगैरह भी दाखिल हो गई, उसमें जायका वगैरह और ये सब चीजें क्या हो गई? दाखिल। तो महसूस में वो पांचों चीजें आ गई जो इन हवासे खमसा जाहिरा के जरिए हमें जिनका इलम होता है। लेकिन आम लोगों के उर्फ में महसूस के माना होता है वो चीज जो आंखों से नजर आए। आवाज को महसूस नहीं कहते क्योंकि वह आंखों से नजर नहीं आती। जायके को वह महसूस नहीं कहते क्योंकि वह आंखों से नजर नहीं आता। खुशबू वगैरह को वो महसूस नहीं कहते क्योंकि वो आंखों से नजर नहीं आती। तो यहां मैंने क्या बतलाया कि ये हाजी ही इसमें इशारा है, इसको वजह किया गया है महसूस और मुबसर चीजों के लिए। महसूस और मुबसर का एक ही माना है, यानी वो चीज जो आंखों से नजर आए। तो इसमें इशारा किस लिए वजह है? इसके जरिए इशारा किया जाता है किसकी तरफ? किसी महसूस और मुबसर चीज की तरफ। मसलन मेरे सामने ये किताब है, ये आंखों से नजर आ रही है तो मैं इसकी तरफ इशारा करूंगा, हादल किताब, ये वाली किताब। कलम आंखों से नजर आता है तो मैं कहूंगा हादल कलम। बात समझ में आ गई? तो इसमें इशारा को किसके लिए वजह किया गया है? महसूस और मुबसर चीजों की तरफ इशारा करने के लिए वजह किया गया है। और यहां पर फहादी ही यह है मुबतदा और फवाइद यह है इसकी खबर। ये फायदे हैं, यानी ये फवाइद ये मुशारुन इले है, और मुशारुन इले फवाइद हैं, और फवाइद से क्या मुराद? शरह जामी मुराद है। क्या मुराद है? शरह जामी मुराद है। और शरह जामी वो तो मानी का नाम है भाई। किसका नाम है भाई? ये फवाइद मानी का नाम है। याद रखो तीन चीजें हैं यहां, एक है अल्फाज, एक है उनके मानी, और एक है नुकूश। अल्फाज वो हैं जिस पर इंसान जुबान से तकल्लुम करता है, ये जो कुछ मैं जुबान से अदा कर रहा हूं ये क्या हैं? अल्फाज। और जब अल्फाज बोले जाएं तो उनका माना जहन में समझ में आता है। मसलन मैंने कहा गिलास, तो पानी पीने का एक बर्तन आपके जहन में आ गया। मैंने कहा मस्जिद, तो आपके जहन में मस्जिद की सूरत आ गई। मैंने कहा किताब, तो आपके जहन में किताब की सूरत आ गई। तो ये जो जुबान से हम अदा करते हैं ये है अल्फाज, और जिस चीज पर ये दलालत करते हैं यानी वो जो माना जहन में आता है वो क्या है? वो इनका माना है, मफहूम है। और एक है नुकूश। नुकूश ये जो आपके सामने किताब में ये जो तहरीर है, ये जो लिखाई है, इनको नुकूश कहते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के देखो टेढ़े मेढ़े खत हैं, लेकिन आपको पता है कि कौन सा खत कौन सी आवाज के लिए वजह किया गया है। अलिफ बा ता सा ये हुरूफ तहज्जी जो हैं ये मुख्तलिफ किस्म की आवाजों के लिए मुकर्रर किए गए हैं, वजा किए गए हैं, और हर जुबान वालों के अपने हुरूफ तहज्जी होते हैं। जैसे उर्दू में अलिफ बे पे है, पे है, अरबी में पे नहीं है। उर्दू में टे है भाई, टे, अलिफ बे पे ते टे, अरबी में टे नहीं, क्योंकि वो पे और टे इस्तेमाल ही नहीं करते। वो अलिफ बा ता सा जीम हा खा, वो जो आवाजें अपने जुबान में बोलने में इस्तेमाल करते हैं उनके लिए उन्होंने मुख्तलिफ हुरूफ वजा किए हुए हैं। चुनांचे आपको मसलन मैं अगर आपको कहता हूं कि मसलन कोई नाम आपको कहता हूं कि या कोई जुमला बोलता हूं और आप लिखते हैं, लिखते हैं, मैं जिस जिस तरह के अल्फाज अदा कर रहा हूं जैसी जैसी आवाज के साथ आप उसके मुताबिक हुरूफ को जोड़ते हुए आप लिखते चले जाते हैं। मसलन मैंने कहा जैद, जैद के शुरू में देखो जा की आवाज है, इसके लिए वो रा जा, जा हमने मुकर्रर की हुई है। जैद के बाद फिर या है, जैद, और या के लिए वो हर्फ जो हमने वजा किया हुआ है वो या है। फिर जैद, इसके आखिर में ये जो दाल की आवाज आ रही है तो इस दाल के लिए हमने एक अलग हर्फ वजा किया हुआ है। तो चुनांचे मैंने कहा जैद लिखो तो आप लिखते हैं जा या दाल। ये आप मेरी जुबान से अदा होने वाली आवाजों को देखकर लिखते हैं। चुनांचे कई दफा ऐसा भी होता है एक लफ्ज उस्ताद आपके सामने जिक्र करता है और आपने वो लफ्ज पहले कहीं लिखा हुआ देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी आप लिख लेते हैं या नहीं लिख लेते, वो हुरूफ यानी जिस तरह उस्ताद उस पर तलफुज कर रहा होता है उन आवाजों से आप अंदाजा लगा लेते हैं कि इसको किस तरह लिखना है भाई। तो वही वाले हुरूफ जो मुख्तलिफ आवाजों वाले हुरूफ हैं, हुरूफ तहजी, उनको आप जोड़कर मिलाते हैं, लिखते हैं और वो लफ्ज लिख लेते हैं भाई। तो ये जो किताब के अंदर आप तहरीर देख रहे हैं इनको कहते हैं नुकूश। ये कुछ टेढ़े मेढ़े खत हैं जो हमने मुख्तलिफ आवाजों के लिए मुकर्रर किए हुए हैं, यानी अलिफ बाता, और फिर इनसे हम मुख्तलिफ लफ्ज बनाते हैं। तो ये नुकूश जो हैं फिर ये उन अल्फाज पर दलालत करते हैं। ये जो किताब में तहरीर है ये इसमें ये जो नुकूश है ये जो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हैं ये क्या करते हैं उन अल्फाज पर दलालत करते हैं, बशर्ते कि आपको इलम हो कि ये वाले हुरूफ किस आवाज के लिए वजा हैं। चुनांचे अगर किसी अंग्रेज के सामने ये आप किताब रख देंगे जो इसको अरबी या उर्दू नहीं आती वो इसको बिल्कुल भी नहीं समझेगा, वो ये देखेगा टेढ़े मेढ़े खत हैं लेकिन ये क्या है वो एक इस पर तलफ्फुज कर ही नहीं सकता। या जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसके सामने अंग्रेजी के हुरूफ अंग्रेजी की किताब रख दी जाए तो वो ये जानता है कि ये टेढ़े मेढ़े नुकूश हैं लेकिन नहीं जानता इसको पढ़ना कैसे है भाई। तो ये जो नुकूश हैं ये अल्फाज पर दलालत करते हैं। तवज्जो है ये नुकूश किस पर दलालत करते हैं अल्फाज पर। फा हाजी ही ये देखो ये फा हा दाल और हा लिखे हुए हैं, इसको देखते ही मैं समझ गया ये क्या लिखा है फा हाजी ही। तो इन नुकूश ने फहाजी ही के लफ्ज पर दलालत की और फिर फहाजी ही के लफ्ज से मुझे उसका माना समझ में आया। तो नुकूश दलालत करते हैं किस पर अल्फाज पर और अल्फाज दलालत करते हैं किस पर माना पर जो फिर हमें समझ में आता है। तो यहां फवाइद से क्या मुराद है शरह जामी और शरह जामी वो इन नुकूश का नाम नहीं है वो इन फवाइद का नाम है और फवाइद क्या है मानी है क्या है भाई देखो ना आगे कहा है बिहल्ली मुश्किलात काफिया ये कामिल दर्जे के फायदे हैं किस चीज में काफिया की मुश्किलात हल करने के बारे में। मुझे बताइए इन नुकूश से काफिया की मुश्किलात हल हो रही हैं या इनका जो माना है उस माना से काफिया की मुश्किलात हल हो रही हैं? माना से हल हो रही हैं, नुकूश से हल नहीं हो रही। मालूम हुआ शरह जामी किसका नाम है ये फवाइद यानी मानी का नाम है। किसका नाम है मानी का नाम है। और ये तो ये नुकूश जो हैं ये अल्फाज पर दलालत कर रहे हैं और अल्फाज किस पर दलालत कर रहे हैं मानी पर जो हमें इनसे समझ में आ रहे हैं। तो बात मैं ये कर रहा था कि हाजी ही इसमें इशारा है और इसमें इशारा को वजह किया गया है किसके लिए महसूस और मुबसर चीज की तरफ इशारा करने के लिए और यहां तो इशारा है किसकी तरफ फवाइद की तरफ और फवाइद तो मानी है फवाइद तो मानी है, ये तो महसूस और मुबसर नहीं। हालांकि इसमें इशारा को किसके लिए वजह किया गया है, मुबसर और महसूस के लिए, और मानी तो मुबसर और महसूस नहीं। तो जवाब देते हैं उलमा कि भाई इसके जरिए इशारा है इन नुकूश की तरफ। ये जो शरे जामी के अंदर नुकूश हैं सारे, इस हाजही के जरिए इनकी तरफ इशारा है। और ये नुकूश महसूस और मुबसर हैं या नहीं, आंखों से दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, ये आंखों से दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर फिर इश्काल होता है कि हाजही के जरिए नुकूश की तरफ कैसे इशारा हो सकता है, क्योंकि हाजही तो जो है हाजही उसका मुशारुन इलैह, तो उन्होंने कहा है फवाइद हैं, और फवाइद किसका नाम है, मानी का नाम है। नीज आगे खुद भी कहा उसके जरिए काफिया की मुश्किलात हल होंगी, और वो किससे हल होंगी, मानी से हल होंगी, नुकूश से हल नहीं होंगी। तो जवाब ये कि भाई ये हाजही के जरिए इशारा है नुकूश की तरफ, और ये नुकूश दलालत कर रहे हैं किस पर, अल्फाज पर, किस पर, अव्वलन अल्फाज पर, और फिर वो अल्फाज किस पे दलालत कर रहे हैं, मानी पर। तो जब हाजही के जरिए इन नुकूश की तरफ इशारा हो गया तो गोया उन मानी की तरफ भी इशारा हो गया, क्योंकि ये नुकूश किस पर बिलाखिर दलालत करते हैं, मानी पर दलालत करते हैं अल्फाज के वास्ते से। बात समझ में आ गई। तो अगर हाजही के जरिए इशारा माना जाए इन नुकूश की तरफ, तो इसका मतलब है हाजही अपने असल माना में इस्तेमाल हो रहा है। हाजही वजह भी किसके लिए, महसूस और मुबसर के लिए, और यहां इशारा भी किसकी तरफ, नुकूश की तरफ, वो भी क्या है, महसूस और मुबसर। तो लिहाजा हाजही किस माना में इस्तेमाल हुआ, अपने हकीकी माना में इस्तेमाल हुआ। यह वजह भी महसूस और मुबसर के लिए था, और इस्तेमाल भी किस में हुआ, महसूस और मुबसर के लिए। और अगर आप इसे इशारा लेते हैं मानी की तरफ, इसको बनाते हैं कि वो नुकूश जिन मानी पर दलालत कर रहे हैं, अगर वो मुराद लेते हैं, तो फिर याद रखो इस सूरत में हाजही अपने मजाजी माना में इस्तेमाल होगा। किस माना में, क्योंकि मानी तो महसूस और मुबसर नहीं होते, वो तो जहन में आते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते। तो इस सूरत में हाजही अपने हकीकी माना में इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि किस माना में, मजाजी माना में इस्तेमाल होगा। और नीज ये भी याद रखिए, यहां दो सूरतें हैं। एक सूरत ये कि मुसन्निफ ने पहले किताब लिखी हो, फिर उसके बाद ये खुतबा लिखा हो, और इस खुतबे में वो क्या कह रहे हैं, फहादिही फवाइदु, ये क्या हैं, कुछ फायदे हैं, ये कुछ फायदे। तो बताइए जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिस जामी की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो लिख चुके हैं या नहीं। मैंने बताया ना, एक सूरत यह कि किताब पहले लिखी हो, खुतबा बाद में लिखा हो, तो किताब पहले जब लिखी जा चुकी तो हाजही के जरिए इशारा होगा किसकी तरफ, उस किताब की तरफ, किसकी तरफ, उस किताब की तरफ, यूं कहो उन नुकूश की तरफ या उन मानी की तरफ इशारा होगा। बात समझ में आ गई। तो एक सूरत यह है कि यह खुतबा बाद में लिखा गया हो, तो किताब पहले लिखी जा चुकी, लिहाजा हाजही के जरिए उस किताब के जो नुकूश हैं या उस किताब के जो मानी हैं उनकी तरफ इशारा हो गया, किताब लिखी जा चुकी है। और इसको खुतबा इल्हाकिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्हाका युल्हिकु, इल्हाक का माना मिलाना। देखो किताब पहले लिखी गई और खुतबा बाद में लिखकर इसके साथ मिला दिया गया। और दूसरी सूरत यह है कि खुतबा पहले लिखा गया और किताब बाद में, यानी अभी किताब लिखी नहीं है, मुसन्निफ पहले ही फरमा रहे हैं फहाज़िही फवाइदु वाफिया, ये कामिल दर्जे के फायदे हैं, अभी किताब नहीं लिखी, आगाज ही यहीं से किया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वलीही वस्सलातु अला नबीही वाला आलिही वसहाबिही मुतअद्दिबीन बि आदाबिही अम्मा बादु फहादिही फवाइदु वाफिया। अभी मुसन्निफ यहीं पहुंचे, आगे अभी किताब लिखी ही नहीं है। तो यह खुतबा इब्तिदाइया कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी कि इब्तिदा से ही खुतबा लिखा, उसके बाद किताब लिखी। तो इस सूरत में फिर इश्काल होता है कि भाई अगर ये खुतबा इल्हाकिया हो फिर तो आपका जवाब ठीक है, फहाजही के जरिए किसकी तरफ इशारा, शरे जामी की तरफ, वो पहले ही लिखी जा चुकी। लेकिन अगर किताब अभी लिखी नहीं है, अभी लिख रहे हैं, तो फिर हाजही के जरिए किसकी तरफ इशारा हुआ अगर ये खुतबा इब्तिदाइया हो। तो जवाब उसका ये कि भाई मुसन्निफ जब भी कोई किताब लिखने का इरादा करता है तो कुछ ना कुछ इजमाली खाका उसके जहन में होता है कि इस तरह की मैं किताब लिखूंगा जिसमें इस तरह की कुछ तफसील बयान करूंगा। तफसीली तौर पर सारी बातें तो नहीं, तफसीली तो वो खुद आगे सोच सोच कर लिखता रहेगा, लेकिन इजमाली कुछ खाका होता है या नहीं कि इस मौजू पे लिखूंगा और इस तरह की किताब लिखूंगा, तो वो जो इजमाली खाका जहन में मौजूद है हाज ही के जरिए उस की तरफ इशारा कर दिया। और वो कहां मौजूद? जहन में मौजूद। वो कुछ मानी जो जहन में मौजूद हैं कि इस तरह की किताब लिखूंगा तो हाज ही के लिए फिर उसकी तरफ इशारा होगा अगर ये खुतबा इब्तिदाइया हो, तो इस सूरत में फिर हाज ही क्या होगा? मजाजी माना में इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो खाका तो जहन में है और हाज ही को तो वजह किसके लिए किया गया है? महसूस और मुबसर के लिए। तो ये तो माना है और माना तो महसूस और मुबसर नहीं। बात समझ में आ गई? तो हाज ही के लिए इशारा हो सकता है नकूश की तरफ भी और या उन मानी की तरफ भी जिन पर वो नकूश दलालत कर रहे हैं, अगर ये खुतबा इल्हाकिया हो, और अगर ये खुतबा इब्तिदाइया हो तो हाज ही के लिए इशारा किसकी तरफ होगा? वो इजमाली खाका जो किताब का जहन में मौजूद, या वो इजमाली फवाइद जो जहन में मौजूद हैं, तो इस सूरत में फिर ये कतई तौर पर हाज ही अपने मजाजी माना में ही इस्तेमाल हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं फहादी ही फवाइदु वाफियतुन, ये कुछ कामिल दर्जे के फायदे हैं, बिहल मुश्किलातिल काफिया, ये बाब माने फी के है, ऐ फी हल मुश्किलातिल काफिया, काफिया किताब की मुश्किलात के हल करने में, काफिया किताब की मुश्किलात हल करने से मुतअल्लिक ये कुछ कामिल दर्जे के फायदे हैं, इनके लिए काफिया की मुश्किलात हल हो जाएंगी। देखिए भाई किताब पर, फहादिही फवाइदु वाफियतुन बिहल मुश्किलातिल काफियति, तो ये कुछ कामिल दर्जे के फायदे हैं काफिया किताब की मुश्किलात हल करने के बारे में, लिल अल्लामतिल मुश्तहिरी फिल मशारिक वल मगारिब। अल्लामा, अल्लाम जो है मुबालगे का सीगा है, जैसे जर्राबुन खूब पिटाई करने वाला, इसी तरह अल्लामुन क्या माना? खूब जानने वाला। और इसके साथ जो ता मिलाई गई, ये ता जो है ये भी मुबालगे के लिए है, या ये ताकीद मुबालगा के लिए है, किस लिए है? यानी उसी मुबालगे को पक्का कर रही है, तो ये ता भी मुबालगे के लिए है या ताकीद मुबालगे के लिए है भाई, तो ये तानीस के लिए नहीं है। आगे के काफिया किताब जो किसकी है? अल्लामा इब्ने हाजिब की है भाई। देखो इबारत में आ रहा है, लिल अल्लामतिल मुश्तहिरी फिल मशारिक वल मगारिबी अश्शेख इब्नुल हाजिबी, की काफिया किताब जो उस अल्लामा की है जो कि अल मुश्तहिरी जो मशहूर है, फिल मशारिक वल मगारिबी, मशारिक और मगारिब, मशरिकों और मगरिबों में जो मशहूर है, यानी अश्शेख इब्नुल हाजिब, यानी कि शेख इब्नुल हाजिब भाई, ये उनकी किताब है। तो अल्लामा, अल्लामा से कौन मुराद है? शेख इब्नुल हाजिब भाई। तो अब आप ये ना कहें कि अल्लामतुन के आखिर में तो ता है और ता तानीस की अलामत होती है, तो ये इब्नुल हाजिब की सिफत कैसे बन गई? मैंने बतला दिया कि अल्लामुन क्या है? मुबालगे का सीगा है, इसका माना है खूब जानने वाला, और इसके आखिर में जो ता है वो तानीस की नहीं है बल्कि वो मुबालगे के लिए है, या मुबालगे की ताकीद के लिए है। याद रखो ये ता अरबी जुबान में कई मानी के लिए इस्तेमाल होती है, कभी ये तानीस के लिए आती है जैसे जारिबुन और जारिबतुन, कभी कभार ये तजकीर के लिए भी ये ता आती है भाई, जैसे सलासतु रिजालिन, आपने पढ़ा है कि 3 से लेकर 10 तक जो अदद है वो अगर मादूद मुजक्कर हो तो उसके साथ वो ता के साथ आता है, और अगर मादूद मुअन्नस हो तो बगैर ता के आता है। तो अगर मैं बतलाना चाहता हूं 3 आदमी तो क्या कहूंगा? सलासतु रिजालिन, देखा रिजाल मुजक्कर हैं तो सलासा के साथ मैं ता लेकर आया भाई, और अगर मुअन्नस हो फिर ता नहीं लाते, मसलन मैं औरतें कहना चाहता हूं 3 औरतें तो कहूंगा सलासु निस्वतिन, सलासो निस्वतिन। देखो निस्वा औरतें, इसके लिए फिर मैं ताद नहीं लेकर आया। मालूम हुआ ये सलासा से लेकर आशारा तक आदद में जो गोल ता आती है ये तज़कीर के लिए है। देखो आज एक नया फायदा आपको मालूम हो गया कि ये गोल ता कभी मुजक्कर के लिए भी आती है भाई, और वो क्या है सलासा से लेकर आशारा तक। अगर ता आए तो ये किसके लिए है मुजक्कर के लिए, और अगर ता ना आए तो ये मुअन्नस के लिए है भाई। तो ता कभी तानीस के लिए आती है, कभी ता तज़कीर के लिए आती है, कभी ता वहदत के लिए आती है। किसके लिए? वहदत। जैसे तमरतुन, तमरतुन का क्या माना? एक खजूर। तमर का माना खजूर, एक भी हो सकती है और ज्यादा भी, लेकिन तमरतुन के गोल ता के साथ कहें तो इसका क्या माना है? एक खजूर। तो कभी ता तानीस के लिए आती है, कभी ता तज़कीर के लिए आती है, कभी ता वहदत के लिए आती है, कभी ता मुबालगे के लिए आती है, जैसे अल्लामतुन के अंदर है ता। और कभी ता जो है वो वस्फियत से इस्मियत की तरफ नकल करने के लिए आती है। वस्फियत से एक वसफ को नकल करके इसम बना लिया जाए भाई, उसके साथ ता मिला देते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे काफिया, काफिया क्या है? काफी, काफी का माना वो चीज जो काफी हो जाए। वो कोई भी चीज हो सकती है जो आपके लिए काफी हो, उसको क्या कहेंगे? काफी। लेकिन बाद में ये इसम बन गया किताब के लिए, और इसके साथ गोल ता मिला दी गई, और ये किस लिए है? वस्फियत से इसको नकल कर लिया किसकी तरफ? इस्मियत की तरफ। काफियतुन, अब ये इसम है वसफ नहीं। बात समझ में आ गई? तो कभी ता जो आती है वो वस्फियत से इस्मियत की तरफ नकल करने के लिए आती है। और कभी कभार याद रखो ये ता जो है ये इवज में आती है। किसमें आती है? ईवज में ये ता आती है। कोई एक आध हर्फ हजफ करके उसके ईवज गोल ता ले आते हैं, जैसे वादा याईदो, वादा याईदो ईदातन, ईदातन। देखो असल में क्या था? वियदन था, वियदन या वियदन कह लो। फिर वाव को शुरू से हजफ किया और उसके ईवज आखिर में क्या ले आए? गोल ता ले आए। तो ये कभी कभार किसी हर्फ के ईवज में ले आते हैं, रिवज में ले आते हैं। और इसी तरह कभी ये ता जो है मस्तर बनाने के लिए लाई जाती है। क्या बनाने के लिए? मस्तर बनाने के लिए लाई जाती है। जैसे फाइल, फाइल काम करने वाला, और इससे आप मस्तर बनाना चाहते हैं तो इसके आखिर में याए मुशद्दद और गोल ता मिला देते हैं, तो क्या कहते हैं? फाइलियत। फाइलियत का क्या माना? फाइल होना। अब यह मस्तर बन गया फाइल होना। जारिब का क्या माना? पिटाई करने वाला, और जारिबियत जारिब होना, जारिब होना। तो ये जो ता है अरबी में कई मानी के लिए इस्तेमाल होती है, ये तानीस के लिए भी इस्तेमाल होती है, ये तस्कीर के लिए भी इस्तेमाल होती है, और इसी तरह ये वस्फियत से इस्मियत की तरफ नकल करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, इसी तरह ये वहदत के लिए भी इस्तेमाल होती है, और ये मस्तर बनाने के लिए भी लाई जाती है, और मुबालगे के लिए भी लाई जाती है, और वहदत के लिए भी। तो कई मानी के लिए यह ता इस्तेमाल होती है। तो लिल अल्लामा के अंदर यह जो ता है ये मुबालगे के लिए है। किसके लिए है? मुबालगे के लिए है, तो यह तानीस के लिए नहीं है। तो अल्लामा का माना है बहुत जानने वाला, खूब जानने वाला। लेकिन ये लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, अगरचे सबसे ज्यादा इलम अल्लाह का है भाई, क्योंकि इस अल्लामा लफ्ज के अंदर ता जुड़ी हुई है। तो बहरहाल तानीस का वहम तो पड़ता है भाई, अगरचे ये ता तानीस वाली नहीं, लेकिन तानीस का वहम तो पड़ता है। लिहाजा इसलिए अल्लाह ताला की जात के लिए यह अल्लामा का वसफ जिक्र नहीं किया जाता भाई। अच्छा, लिल अल्लामती, वो अल्लामा अल मुश्तहिरी जो मशहूर है, फिल मशारिक वल मगारिबी, मशरिकों और मगरिबों में। मशरिक की जमा है मशारिक और मगरिब की जमा है मगारिब। मशरिक जहां से सूरज तुलू होता है, मगरिब जहां सूरज गुरूब होता है। और मशारिक और मगारिब से मुराद है सारी दुनिया, ये किनाया है तमाम दुनिया से, क्योंकि जब मशरिक और मगरिब बयान कर दिए तो दरमियान वाला सारा खुद ही उसके अंदर आ गया। जो अलमुश्तहिरी फिल मशारिक वल मगारिबी, वो अल्लामा जो मशहूर हैं मशरिकों और मगरिबों में, यानी तमाम दुनिया के अंदर मशहूर हैं, तमाम दुनिया के अंदर। तो ये किनाया है ये मशारिक और मगारिब तमाम दुनिया से। और फिर ये जमा लेकर आए, भाई जमा क्यों लेकर आए, मशरिक तो एक है मगरिब एक है, जमा क्यों लेकर आए? तो जवाब ये कि नहीं भाई, मशरिक एक नहीं है। याद रखो, सूरज आज एक जगह से तुलू हुआ तो अगले दिन बेआईन ही उसी जगह से सूरज तुलू नहीं होगा, बल्कि मामूली सा कुछ फर्क होगा भाई, बहुत मामूली से फर्क के साथ तुलू होगा भाई। चुनांचे इल्मे फलकियात वाले फरमाते हैं, उलमा लिखते हैं कि साल में सबसे छोटा दिन 21 या 22 दिसंबर होता है, जिसके में दिन सबसे छोटा है घंटों के हिसाब से और रात सबसे लंबी होती है, और सबसे लंबा दिन जो है 21 या 22 जून को होता है, इसमें रात सबसे छोटी होती है घंटों के हिसाब से भाई। तो ये जो 21 दिसंबर से लेकर 21 जून तक ये जो 6 महीने हैं, 21 दिसंबर को सूरज एक जगह से तुलू है, अब हर रोज वो अपनी जगह थोड़ी थोड़ी बदलता रहता है, यहां तक कि 21 जून की तारीख आ जाती है और ये 180 या 182 दिन तक सूरज एक तरफ को थोड़ा थोड़ा हरकत करते करते बदलता जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो एक ही तरफ को वो नुक्ते एक एक नुक्ता बढ़ता जा रहा है हर रोज भाई, यहां तक कि 21 जून तक वो 180 दिन या 182 दिन जब पूरे हो जाते हैं तो इख्तिताम हो गया, 180 दिन पूरे हो गए। तो अब फिर अगले 21 जून को जब सूरज निकलेगा, अब वापस चलना शुरू होगा उन्हीं नुक्तों पर, और हर रोज फिर उसी तरह एक एक नुक्ते पर वापस चलते हुए 21 दिसंबर को दोबारा उसी मकाम से तुलू होगा जहां पिछले साल से तुलू हुआ था। तो मालूम हुआ कि सूरज के तुलू होने की जगह हर रोज बदलती है, यानी यूं कहो मशरिक हर रोज बदलता है। सर्दियों का मशरिक और है, गर्मियों का मशरिक और है, और ये जो दरमियानी दिन है इनमें सूरज एक तरफ हरकत करता रहता है यहां तक कि इंतहा को पहुंचता है, फिर वापसी का सफर शुरू होता है और फिर दूसरी इंतहा को पहुंचता है। तो गोया मशरिक एक नहीं है, हर रोज बदलती है, इसीलिए मशारिक और मगारिब जमा इस्तेमाल किया, और इसे किनाया है पूरी दुनिया भाई। तो कहते हैं ये कुछ कामिल दर्जे के फायदे हैं, बिहल मुश्किलात इल काफियती, काफिया किताब की मुश्किलात के हल के बारे में, लिल अल्लामती, ये हाल है काफिया से, वो किताब इस हाल में कि किसकी है, लिल अल्लामती उस अल्लामा की, अल मुश्तहिरी फिल मशारिक वल मगारिब, जो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, अश्शेख इब्नुल हाजिब, और वो शेख इब्नुल हाजिब हैं भाई। शेख अरबी जुबान में साहिब फजलो कमाल इलम वाली शख्सियत जो है उसको शेख कहा जाता है। बूढ़े को भी क्या कहते हैं, बूढ़े आदमी को भी अरबी में शेख कहते हैं, इसी तरह वो शख्स जो फजलो कमाल वाला हो उसको भी शेख कहा जाता है, और इसी तरह उस्ताज को भी शेख कह देते हैं कि हुआ शेखी, वो क्या है, मेरे शेख हैं, यानी मेरे उस्ताज हैं भाई। अशेख इब्नुल हाजिब, और इब्नुल हाजिब मैंने बताया अल्लामा इब्न हाजिब, तो बाज उलमा इसका तर्जमा क्या करते हैं, इब्नुल हाजिब का क्या तर्जमा करते हैं, दरबान के बेटे, ये तर्जमा दुरुस्त नहीं है भाई, बल्कि इब्नुल हाजिब का माना है सेक्रेटरी के बेटे, ये चूंकि उस शहर का जो गवर्नर था उसके सेक्रेटरी थे इनके वाली साहब, इसलिए ये इस नाम से मशहूर हुए। अगर दरबान इसका माना किया जाए, दरबान को चौकीदार को कहते हैं जो दरवाजे पर खड़ा होता है, ये तो फिर मजाक उड़ाना हुआ, ये तो कोई तारीफ वाला लफ्ज ना हुआ, चौकीदार का बेटा। बात समझ में आ गई? चूंकि ये बड़े बाप के बेटे थे, सेक्रेटरी के बेटे थे, इसलिए सारे तलबा इनको क्या कहते थे, इब्नुल हाजिब, ये तो सेक्रेटरी के बेटे हैं, और फिर इसी नाम से ये मशहूर हो गए भाई। अब तरकीब याद रखना, याद रखना, लिल अल्लामती मैंने क्या बताया, ये जार मजरूर क्या बनेंगे, हाल बनेंगे काफिया से, वो काफिया इस हाल में कि वो तसनीफ है किसकी, अल्लामा, उस अल्लामा की जो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो ये अल्लामा मजरूर हुआ, ये है मौसूफ। और अल मुश्तहिरी फिल मशारिक वल मगारिब, ये क्या है उसकी सिफत। और मौसूफ सिफत मिलकर, याद रखो ये जो आगे अशेख आया, ये इससे बदल बनेगा या अतफे बयान बनेगा, या बदल बनेगा या अतफे बयान बनेगा। भाई वजह ये कि शेख जो है वो सिफत का सीगा नहीं है, वो इसमें जामिद है। भाई तवज्जो है, शेख क्या है इसमें जामिद। और माकबल में कौन से सीगे जिक्र हैं, सिफत वाले, और सिफत वाले सीगों के लिए इसमें जामिद सिफत नहीं बनता। भाई इसमें जामिद के लिए तो सिफत के सीगे सिफत बनते हैं। अर रजुल शुजाउ, रजुल क्या है इसमें जामिद, अशुजाउ सिफत का सीगा है, तो रजुल मौसूफ अशुजाउ सिफत बनेगी। तो इसमें जामिद के लिए सिफत का सीगा सिफत बनता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अशुजा को मौसूफ बना दें और अर्रजुल को क्या कर दें उसकी सिफत बना दें, यह नहीं हो सकता भाई। तो लिहाजा यहां तो अल-अल्लामा और अल-मुश्तहिर पहले आ गए और अशेख जो है वो बाद में आया, ये उनके लिए सिफत तो नहीं बन सकता। फिर इसको क्या बनाएंगे, बदल, बदल या अतफे बयान, या क्या बनाएंगे, अतफे बदल या अतफे बयान। भाई मसलन बदल इसको बना लो, और फिर आगे जो इब्नुल हाजिब है, इब्नुल हाजिब है वो फिर इस शेख से बदल या अतफे बयान बनेगा, वो इस शेख से बदल या अतफे बयान बनेगा। याद रखो किसी नाम से पहले उसकी कोई सिफात जिक्र कर दी जाए, नाम से पहले कोई सिफात वगैरह या अलकाब वगैरह जिक्र कर दिए जाए तो वो ना, वो फिर उससे बदल बनता है, क्या बनता है, बदल बनता है या अतफे बयान बनता है। तो अशेख को क्या बना लो, मुबदल मिन हो, और इब्नुल हाजिब को क्या बनाओ उससे बदल, या अशेख को बनाओ मातूफुन अले और इब्नुल हाजिब को बनाओ अतफे बयान। जो पहले आए उसको कहते हैं मुबदल मिन हो, और जो बाद में आए उसको कहते हैं बदल। इसी तरह अतफे बयान में जो पहले आए उसको कहते हैं मातूफुन अलै, और जो बाद में आए उसको कहते हैं अतफे बयान, जिसके जरिए वजाहत हो जाती है कि इससे कौन मुराद है। तो अल-अल्लामतिल मुश्तहिर इसको क्या बना लेंगे, मातूफुन अलै, क्या बना लो, मातूफुन अलै। और अशेख इसको क्या बनाओ, अतफे बयान बनाओ, क्या बनाओ, तरकीब समझ में आ गई। तो अशेख को हमने क्या बनाया, अतफे बयान, और इब्नुल हाजिब को क्या बनाया, बदल, या इसका बराक्स कर लो, शेख को बना दो बदल और इब्नुल हाजिब को क्या बना दो, अतफे बयान बना दो। बात समझ में आ गई। और नीज बल्कि यहां पर तीन तरह के एराब पढ़ना जायज हैं, तीन तरह कि अशेख जो है, यह हाशिए में भी आपके दिया हुआ है, अशेख इब्नुल हाजिब, इस शेख को क्या बनाया, बदल, और आप चाहें तो इसको खबर बना दें मुब्तदा के लिए, हुआ शेख, क्या बना दो, हुआ मुब्तदा और अशेख उसकी खबर, मुब्तदा भी मरफू होता है और खबर भी मरफू, और आप चाहें तो इसको अशेख मंसूब पढ़ें, इस सूरत में ये मफूल बनेगा आनी फेल के लिए, आनी, आना यानी का माना होता है इरादा करना, यानी मुराद, मुराद आनी, मेरी मुराद ये है। ये किताब किसकी है, साहिब जामी फरमाते हैं ये काफिया जो है ये किताब है उस अल्लामा की जो दुनिया, पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, आनी शेखा, मेरी मुराद जो है शेख इब्नुल हाजिब है। भाई मेरी मुराद, तो देखो तो इस शेख पर कितने एराब, तीन एराब, इस पर रफा पढ़ो खबर होने की बिना पर, इसको खबर बनाओ या इसको मफूल बनाओ किसके लिए, आनी के लिए, फिर इस पर नसब पढ़ सकते हैं, और चाहें तो आप इसको माकबल से बदल बना दें या क्या बना दें, अतफे बयान बना दें। बात समझ में आ गई। और बदल और मुबदल मिनहू का एक ही एराब होता है, मातूफुन आले और अतफे बयान का एक ही एराब होता है। फिर इसी तरह इब्नुल हाजिब में भी यही तीनों सूरतें होंगी, आप चाहें तो इब्नुल हाजिब को क्या बनाएं, अशेख से बदल बनाएं, चाहे तो इसको आप खबर बनाएं किसके लिए, मुब्तदा के लिए हुआ इब्नुल हाजिब, वो शेख कौन हैं? इब्नुल
हाजिब,
इब्नुल हाजिब हैं। और आप चाहें तो इसको आनी के लिए मफूल भी ही बना लें। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं देखिए किताब पर, फहादिही फवाइदु वाफिया, ये कुछ कामिल दर्जे के फायदे हैं काफिया किताब की मुश्किलात हल करने के बारे में, जो के तसनीफ है उस अल्लामा की जो मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर, और वो कौन है? शेख इब्नुल हाजिब हैं। तगम्मदहुल्लाहु बिगुफरानिही व अस्कनहु बुहबूहता जिनानिही। तगम्मुद का माना होता है ढांप लेना। तगम्मदहुल्लाहु, अल्लाह उनको ढांप ले, बिगुफरानिही अपनी मगफिरत के साथ, अल्लाह उनको अपनी मगफिरत के साथ ढांप ले, यानी अल्लाह उनकी कामिल मगफिरत फरमा दे। वह अस्कनहु, अस्कना युस्किनु का माना होता है ठहराना, रिहाइश देना। बुहबूहा, किसी चीज का दरमियान वाला हिस्सा या किसी चीज का जो उम्दा हिस्सा हो उसको क्या कहते हैं? बुहबूहतुन, इसकी जमा बहाहीह आती है, बहाहीह। और जिनान, जिनान जमा है जन्नतुन की, जिनान किसकी जमा है? जन्नतुन की जमा है जिनान, भी कसरिल जीम भाई, जनान भी फतही जीम हो तो ये दिल को कहते हैं, जनान किसे कहते हैं? दिल को, और जिनान हो तो ये जन्नत की जमा है भाई। व अस्कनहु बुहबूहता जिनानी ही, और अल्लाह उनको ठहराए बुहबूहता जिनानी ही अपनी जन्नत के बीच में, अल्लाह अपनी जन्नतों के बीच में उनको ठहराए, यानी वहां पर उनको जगह दे। तो कहते हैं तगम्मदहुल्लाहु बिगुफरानिही, अल्लाह उनको अपनी मगफिरत के साथ ढांप ले। व अस्कनहु बुहबूहता जिनानिही, और अल्लाह उनको अपनी जन्नतों के बीच में ठहराए, अल्लाह उनको अपनी जन्नतों के बीच में जगह दे। या बुहबूहा शय का उम्दा हिस्सा, उम्दा हिस्से को भी कहते हैं, वस्ते शय को भी और शय का उम्दा, यही तर्जमा कर लें। और अल्लाह इनको अपनी जन्नतों के उम्दा हिस्से के अंदर ठहराए, जन्नतों में भी जो उम्दा जन्नत है अल्लाह उसमें उनको ठहराए। नजम तुहा फी सिल्की तकरीर व सिमती तहरीर। नजम भाई एक है नसर, ये आम कलाम जो हम करते हैं ये क्या है? नसर। और एक है नजम, ये जो अशआर हैं ये क्या है? नजम। नजम यंजिमु का माना होता है परोना, परोना। तो नजम को भी नजम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें अल्फाज एक खास तरतीब से परोए जाते हैं, खास तरतीब से जोड़े जाते हैं। हां जमीर राजे है फवाइद को, किसको राजे? फवाइद को। और याद रखो ये सिफत सानी है फवाइद की, किसकी? फवाइद की। एक सिफत आ गई वाफिया, और ये जो बिहल मुश्किलातिल काफिया है ये जार मजरूर मिलकर मुतालिक है वाफिया से, ये कामिल है किस चीज में? काफिया की मुश्किलात हल करने में ये कामिल है भाई। और तो इसकी पहली सिफत क्या आई फवाइद की? वाफिया। और दूसरी सिफत क्या आई? नजम तुहा, ये फेल आया। देखो मैंने बताया था नकिरा के बाद अगर फेल आ जाए तो वो अमूमन उसके लिए क्या बनता है? सिफत बनता है। तो फवाइद हुआ मौसूफ, वाफिया हुई सिफत अव्वल, फवाइद नकिरा है, और आगे फेल नजम तुहा आया तो वो उसके लिए क्या बनेगा? सिफत सानी बनेगा। और हा जमीर राजे है फवाइद को, देखा यह रबत भी आ गया, नजम तुहा यह पूरा जुमला बनेगा, फेल अपने फाइल वगैरह से मिलकर जुमला बनता है, और जुमला बनकर फिर यह सिफत बनेगा। और जुमले को जब भी किसी चीज से जोड़ना हो दरमियान में क्या जरूरी है? रबत। तो रबत यह हा जमीर जो है नजम तुहा के साथ यह रबत दे रही है, यह फवाइद को राजे है। नजम तुहा, मैंने इन फवाइद को परोया है, फिर सिल्क की तकरीर व सिमती तहरीर। एक है सिल्क भाई, सिल्क सीन लाम काफ, सिल्क याद रखो ये जो मोतियों का हार हो उस हार के अंदर जो धागा हो, ये जो धागा जिसके अंदर मोती परोए जाते हैं उसको सिल्क कहते हैं, यानी लड़ी, लड़ी। और इसी तरह आगे सिम्त का लफ्ज आ रहा है, सीन मीम त्वा, सिम्त भी लड़ी को कहते हैं। सिल्क भी लड़ी और सिमत भी लड़ी, लेकिन फर्क यह है कि जो सिल्क है सीन लाम काफ वो धागा है जिसमें मोती अभी न परोए गए हों। लड़ी तो है लेकिन अभी हार उसको बनाया नहीं, उसमें मोती परोए नहीं। और सिमत वो लड़ी जिसके अंदर मोती परो लिए गए हैं, इसको क्या कहते हैं? सिमत भाई, सीन मीम और त्वा है भाई, त्वा ज़ा। फर्क समझ में आया? तो नजम तुहा, ये ऐसे फवाइद हैं जिनको मैंने परोया है फी सिल की तकरीर, तकरीर की लड़ी में, वसिम की तहरीर और तहरीर की लड़ी में। ये ऐसे फवाइद हैं जिनको मैंने तकरीर और तहरीर की लड़ी में परोया है। इन अल्फाज से तो यूं मालूम होता है कि ये खुतबा इल्हाकिया है। ये खुतबा क्या है? इल्हाकिया है। पहले किताब लिख ली है, अब फरमा रहे हैं कि इन फवाइद को मैंने किस में परोया है? तकरीर और तहरीर की लड़ी में परोया है। मालूम हुआ परो चुके हैं, ये तहरीर और तकरीर कर चुके हैं, उसके बाद अब खुतबा लिख रहे हैं। तो मैंने इन फवाइद को परोया है तकरीर और तहरीर की लड़ी में। इबारत पे नजर रखें, नजम तुहा फी सिल्क की तकरीरी, सिल्क मुजाफ है, अत तकरीर मुजाफिल है, तकरीर की लड़ी, तकरीर की लड़ी, लड़ी। भाई तकरीर की तो कोई लड़ी नहीं होती, हार या मोतियों की लड़ी तो है, तकरीर की लड़ी तो नहीं होती। इसी तरह आगे फरमाया वसिमत तहरीरी, मैं सिमत है मुजाफ, अ तहरीर है मुजाफुन इले, और मैंने इनको परोया है तहरीर की लड़ी में, तहरीर की लड़ी में। तो भाई तहरीर की तो कोई लड़ी नहीं होती, तो जवाब ये कि ये दोनों जगह जो इजाफत है सिल की तकरीर और सिमती तहरीर, ये लुजैनुल मा की कबील से है। किस कबील से है? लुजैनुल मा। ये लफ्ज़ याद रखें, लुजैन अरबी जुबान में चांदी को कहते हैं और मा उन पानी को कहते हैं। लुजैनुल मा पानी की चांदी, पानी की चांदी। ये लुजैनुल मा याद रखो, इसके अंदर इजाफत हो रही है, इजाफत हो रही है मुशब्बा बिही की मुशब्बा की तरफ। तवज्जो है, मुशब्बा बिही की इजाफत हो रही है किसकी तरफ? मुशब्बा की तरफ। मुशब्बा बिही मुजाफ है और मुशब्बा मुजाफ। देखो खुद आप समझ जाएंगे एक दफा, तो फिर आपके लिए बयान करना आसान हो जाएगा। लुजैनुल मा क्या तर्जमा? हाँ, मुजाफिले से तर्जमा शुरू करो। पानी की चांदी, पानी की चांदी। ये असल में था अलमाउ कल्लुजैनी, अलमाओ वो पानी जो चांदी जैसा है। कोई पानी बड़ा ही साफ सुथरा और शफाफ हो तो अरब क्या कहते हैं? ये चांदी जैसा पानी है, यानी खूब साफ सुथरा है, इसमें किसी किस्म का गर्दो गुबार नहीं है। तो क्या कहते हैं? अलमाओ कल्लुजैनी। ये पानी किसकी तरह है? चांदी की तरह है। तो लफ्जों पे गौर करो, मां को तशबीह दी किसके साथ? चांदी के साथ। अलमाओ कल्लुजैनी, मा हुआ मुशब्बा और अल्लुजैन क्या है? मुशब्बा बिही है। तो लुजैनुल मा, इसमें मुशब्बा कौन? मा। और मुशब्बा बिही कौन? लुजैन। तो देखा मुशब्बा बिही मुजाफ है और मुशब्बा क्या है? मुजाफिले है। तवज्जो है, मुशब्बा बिही क्या है? मुजाफ है और मुशब्बा मुजाफिले है। तो लुजैनुल मा का क्या माना है? अलमाओ कल लुजैनी। यहां भी इसी तरह है, फेसिल की तकरीरी, ये भी लुजैनुल मा की कबील से है। अब इसको भी खोल लें जरा। लुजैनुल मा को खोला था, क्या बना था? अलमाओ कल लुजैनी। यहां भी इसी तरह कर लो, फेसिल की तकरीरी, अतकरीरो कसिल की, ये तकरीर किसकी तरह है? लड़ी की तरह है। तो तकरीर को तशबीह दे दी किसके साथ? लड़ी के साथ। यानी ये जो मेरी तकरीर है ये मोतियों पर मुश्तमिल है जिनको मैंने किस में परोया है? लड़ी के अंदर। इसी तरह सिमती तहरीर, भाई तहरीर की लड़ी, जरा इसको भी खोल लें। अतहरीरो कसिमती, वो तहरीर जो किसकी तरह है, लड़ी की तरह है। तो ये इजाफत हो रही है मुशब्बा बिही की, किसकी तरफ, मुशब्बा की तरफ। या आसान लफ्जों में कहो कि लुजैनुल मा की कबील से है। कई जगह शुरूहात में किताबों में आप पढ़ेंगे एक शारह बयान करते करते सिर्फ इतना कहकर आगे चला जाएगा ये लुजैनुल मा की कबील से है। किससे है, तो आप खुद समझ जाएं लुजैनुल मा का क्या माना है, अलमाओ कल लुजैन, यानी गोया मुशब्बा बिही की इजाफत हो रही है किसकी तरफ, मुशब्बा की तरफ हो रही है। बात समझ में आ गई। या यूं कहिए कि यहां इस्तेआरा बिल किनाया है, बस इस इबारत में क्या है, इस्तेआरा बिल किनाया है। गोया मुसन्निफ ने यानी मुल्ला जामी ने अपनी इस तहरीर और तकरीर जो है इसको मोतियों के एक हार के साथ तशबीह दी है। तवज्जो है, अपनी इस तकरीर को, अपनी इस इन फवाइद को किसके साथ तशबीह दी, मोतियों के हार के साथ तशबीह दी है। किसको तशबीह दी, तकरीर और तहरीर को। तो तहरीर और तकरीर क्या हुए, मुशब्बा, और किससे तशबीह दी है, मोतियों के हार से। तवज्जो है, किससे तशबीह दी, मोतियों के हार से, और मोतियों के हार का यहां जिक्र नहीं। याद रखो एक चीज को दूसरी चीज के साथ तशबीह दी जाए और मुशब्बा को इबारत में जिक्र करें, मुशब्बा बिही को जिक्र न करें, इसको इस्तेआरा बिल किनाया कहते हैं। क्या कहते हैं, भाई एक होता है मुशब्बा, एक होता है मुशब्बा बिही। जैदुन कल असदी, जैद किस जैसा है, शेर जैसा है, जैद हुआ मुशब्बा, काफ हुआ हरफे तशबी, और असद क्या हुआ, मुशब्बा बिही। देखो इबारत में मुशब्बा भी जिक्र है और मुशब्बा बिही भी जिक्र है, लेकिन कभी कभार इबारत में सिर्फ मुशब्बा को जिक्र करते हैं, मुशब्बा बिही को जिक्र नहीं करते। जैसे यहां पर तकरीर और तहरीर है, इसको तशबीह दी किसके साथ, मोतियों के हार के साथ। तवज्जो से सुनो, तकरीर और तहरीर को किससे तशबीह दी, मोतियों के हार से। तो ये तकरीर और तहरीर क्या, मुशब्बा, और मोतियों का हार क्या, मुशब्बा बिही, और मोतियों का हार यहां जिक्र है नहीं। तो गोया दिल में तशबीह दी है, यूं कहो किस में तशबीह दी है, मुसन्निफ यानी मुल्ला जामी रहमहुल्ला ने दिल में अपनी तहरीर और तकरीर को तशबीह दी है किसके साथ, मोतियों के हार के साथ। भाई हमें कैसे पता चला कि उन्होंने इसको तशबीह दी है मोतियों के हार से, क्योंकि ये तो दिल की बात है, हम तो आलिमुल गैब नहीं है कि हमें पता चले कि मुल्ला जामी के दिल में ये था। भाई उसके लिए फिर करीना चाहिए, क्या चाहिए, करीना चाहिए, और वो करीना यहां पर सिल्क और सिमत का लफ्ज है। लड़ी जो होती है वो हार की होती है, लड़ी किसकी होती है, हार की लड़ी होती है, तहरीर और तकरीर की लड़ी नहीं। तो तहरीर और तकरीर क्या है, मुशब्बा, और मोतियों का हार क्या है, मुशब्बा भी ही। और इबारत में किसको जिक्र किया, मुशब्बा को, तकरीर और तहरीर को। और हमें पता किससे चला, ये जो सिमत और सिल्क को जात जिक्र किया, इससे हमें पता चला कि मुसन्निफ तकरीर और तहरीर को किससे तशबीह दे रहे हैं, मोतियों के हार से। इसलिए क्योंकि लड़ी जो है वो हार की हुआ करती है, तहरीर और तकरीर की लड़ी नहीं होती। तो लड़ी गोया मुशब्बा बिही के साथ लाजिम है, हार के साथ लड़ी का होना लाजिम। हार बगैर लड़ी के हो सकता है, हार बगैर मोतियों का हार बगैर लड़ी के नहीं हो सकता। तो मुशब्बा बिही का जो लाजिम था उसको मुशब्बा के लिए साबित कर दिया, किसके लिए, क्या कहा, सेल के तकरीर, तकरीर की लड़ी, सिमत तहरीर, तहरीर की लड़ी। भाई लड़ी तो किसके साथ लाजिम है, मोतियों के हार के साथ, यानी मुशब्बा बिही के साथ लाजिम है। उस मुशब्बा बिही के लाजिम को किसके लिए साबित कर दिया, मुशब्बा के लिए, कि तकरीर की लड़ी है और तहरीर की लड़ी है। नहीं समझ में आई, नहीं तवज्जो मेरा ख्याल सबक की तरफ। इसको कहते हैं, याद रखो, इस्तेआरा तखयीलिया, तखयील ख्याल से है, ख्याल से। तखयीलिया दो या हैं दरमियान में, इस्तेआरा तखयीलिया। इस्तेआरा तखयीलिया इसे कहते हैं कि मुशब्बा बिही के लाजिम को किसके लिए साबित किया जाए, मुशब्बा के लिए। इस्तेआरा बिल किनाया किसे कहते हैं, कि मुशब्बा इबारत में जिक्र हो और मुशब्बा बिही जिक्र ना हो, और इसके लिए करीना चाहिए। हमें पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए करीना यह इस्तेआरा तखयीलिया होता है। इस्तेआरा तखयीलिया हमें बताता है कि यहां इस्तेआरा बिल किनाया है, क्यों, किस तरह, देखिए ना, यहां सिल्क और सिम्त जिक्र है। सिल्क और सिम्त तहरीर और तकरीर की होती है या मोतियों के हार की, मोतियों के हार, तो एक चीज जो मोतियों के हार के साथ लाजिम थी उसको किसके साथ जिक्र कर दिया, मुशब्बा के लिए उसको साबित कर दिया तकरीर और तहरीर के लिए। इससे पता चला कि तकरीर और तहरीर को किससे तशबीह दी जा रही है, मोतियों के हार के साथ तशबीह दी जा रही है। नहीं, मेरा ख्याल बात समझ में आई, मुश्किल हो गई भाई, देखिए फिर समझो, फिर समझो। दूसरी मिसाल ले लो, अनशबतिल मनियतु अजफारहा, अनशबतिल मनियतु अजफा, अनशबा का माना गाड़ देना, अलमनिया मौत को कहते हैं, अजफार नाखून यानी पंजे, पंजे। अनशबतिल मनियतु अजफारहा, मौत ने अपने पंजे गाड़ दिए, मौत ने अपने पंजे गाड़ दिए। ये किसी जगह पर बहुत से अमवात होने लगे तो लोग कहते हैं कि वहां पर मौत ने अपने पंजे गाड़ दिए हैं। तवज्जो है, ये इस्तेआरा बिल किनाया है। ये क्या है? इस्तेआरा बिल किनाया। किस तरह? कि मौत को तशबीह दी है वहशी दरिंदे के साथ। तो मुशब्बा कौन? मौत। और मुशब्बा भी कौन? वाशी दरिंदा। तो इबारत में सिर्फ मुशब्बा जिक्र है, वाशी दरिंदे का जिक्र नहीं। और फिर मौत को तशबीह दी है वाशी दरिंदे के साथ। आपको कैसे पता चला? क्योंकि कहा मौत ने अपने पंजे गाड़ दिए। भाई पंजे मौत के तो नहीं होते, पंजे तो वाशी दरिंदे के होते हैं। तो मौत के लिए क्या साबित कर दिया? पंजे। क्या साबित कर दिए? और पंजे किसके होते हैं? वाशी। इससे पता चला मौत को किससे तशबीह दी है? वहशी दरिंदे से तशबीह दी है, इसीलिए उसके लिए पंजे भी साबित किए, वरना तो मौत के पंजे नहीं होते। बात समझ में आ गई? तो मौत जिक्र है और मुशब्बा भी ही जिक्र नहीं। तो ये क्या है? इस्तेआरा बिल किनाया। और इस्तेआरा बिल किनाया के लिए कोई करीना चाहिए, कोई चीज जिसे पता चले कि मौत को वहशी दरिंदे से तशबीह दी है, क्योंकि वहशी दरिंदे का तो यहां जिक्र ही नहीं है। तो उसका पता किससे चलता है? कि मुशब्बा भी के लाजिम को किसके लिए साबित करते हैं? मुशब्बा के लिए। दरिंदों के साथ पंजे लाजिम हैं कि नहीं? कोई दरिंदा बगैर पंजों के हो सकता है? नहीं। तो मुशब्बा बिही का लाजिम किसके लिए साबित कर दिया? मुशब्बा यानी मौत के लिए। मौत ने पंजे गाड़ दिए। भाई मौत के तो पंजे नहीं होते, मालूम हुआ मौत की तशबीह किससे है? वशी दरिंदे से। और वशी दरिंदे के साथ क्या लाजिम? पंजे। और वो पंजे किसके लिए साबित कर दिए? मौत के लिए। मालूम हुआ मौत को किससे तशबीह दी है? वशी दरिंदे से। बात समझ में आ गई? यहां भी इसी तरह है, फिसल के तकरीर वसिमति तहरीरी। भाई भाई तकरीर और तहरीर को किससे तशबीह दे दी है? मोतियों के हार से। और मोतियों के हार से तशबीह दी है, और मुशब्बा जिक्र है, तकरीर और तहरीर तो जिक्र है, लेकिन मोतियों का हार यानी मुशब्बा भी जिक्र नहीं। और पता किससे चला? कि मोतियों के हार के साथ जो चीज लाजिम है यानी लड़ी, उसको तकरीर और तहरीर के लिए साबित कर दिया है। मालूम हुआ तहरीर और तकरीर को किससे तशबीह दी जा रही है? मोतियों के हार से। इसीलिए इनके लिए लड़ी साबित कर दी जो मोतियों के हार के साथ लाजिम है। तो मुशब्बा, इबारत में मुशब्बा जिक्र हो और मुशब्बा भी ही जिक्र ना हो, इसको क्या कहते हैं? इस्तेआरा बिल किनाया। और इसके लिए कोई करीना चाहिए, और वो करीना क्या होता है? कि मुशब्बा भी ही के लाजिम को, वो जो महजूफ है, वो जो महजूफ है, वो जो मुशब्बा भी ही महजूफ है, उसके लाजिम को किसके लिए साबित किया जाए? मुशब्बा के लिए। तो इसको इस्तेआरा तखयीलिया कहते हैं। तो इस्तेआरा बिल किनाया के लिए करीना चाहिए, और वो करीना क्या कहलाता है? इस्तेआरा तखयीलिया। और इस्तेआरा तखयीलिया किसे कहते हैं? कि मुशब्बा भी के लाजिम को किसके लिए साबित किया जाए? मुशब्बा के लिए साबित किया जाए। बात समझ में आ गई? कहते हैं नजम तुहा, मैंने इन फवाइद को परोया है फिसल की तकरीरी, तकरीर की लड़ी में, वसीमती तहरीरी और तहरीर की लड़ी में। यानी मैंने इन फवाइद को तकरीर और तहरीर की लड़ी में परोया है। या यूं कहें, यूं कहें, सिल्क, सिल्क वो लड़ी है लेकिन उसमें मोती नहीं, तो यूं कह लो धागा कह लो। क्या है? धागा। नजम तुहा फी सिल्क की तकरीरी, नजम तुहा मैंने उन फवाइद को परोया है फी सिल्क की तकरीरी, तकरीर के धागे में, वसीमती तहरीरी और तहरीर की लड़ी में, तहरीर की लड़ी में। للولد العزيز ضياء الدين يوسف حفظه الله سبحانه عن موجبات التلهف والتأسف للولد العزيز ولد ولد اولاد بھائی یعنی بیٹا مراد ہے بیٹا ولد کا اطلاق مذکر مؤنث سب پر ہوتا ہے اس کی جمع اولاد آتی ہے کیا آتی ہے اولاد یہاں بیٹا مراد ہے العزیز العزیز کا معنی ہے मुअज्जज और एक इसका माना है महबूब और प्यारा लिल वलदिल अजीज और अल वलद से मुराद है मुसन्निफ का बेटा, अलिफ लाम आया, हर वलद नहीं मुराद बल्कि वो खास वलद मुराद है, और वो किसका वलद, मुसन्निफ मुल्ला जामी रहमतुल्लाह के बेटे। लिल वलदी, अपने उस बेटे के लिए, अल अजीज जो महबूब है, यानी जो मुझे बड़ा महबूब है, या अल अजीज का माना मुआज्जज कर लें, या मेरा वो बेटा अल अजीज जो मुआज्जज है, जो यानी उसमें ऐसी सिफात हैं कि सब उसकी इज्जत करते हैं, नेक आदतें हैं उसकी भाई, और जहीन है, मेहनती है, लोगों का ख्याल रखने वाला है, किसी को तकलीफ नहीं देता, तो सब क्या करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। अभी से उसका यह आलम है कि सब उसकी इज्जत करते हैं। तो जो भी माना आप कर लें, तो अल वलद क्या हुआ, मौसूफ, अल अजीज उसकी सिफत, फिर ये मौसूफ सिफत मिलकर इसको बना लेंगे मुबदल मिनहू, और जियाउद्दीन को उससे क्या बना लेंगे, बदल बना लेंगे। और आगे यूसुफ आया, जियाउद्दीन उनका लकब था, बेटे का लकब है जियाउद्दीन भाई, और यूसुफ उनका नाम है भाई, और यूसुफ को फिर अत्फे बयान बना लेंगे, क्या बना लेंगे, अत्फे बयान। और यहां पर भी उसी तरह फिर वही तीनों एराब जारी हो सकते हैं, हुआ के लिए खबर भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो बदल बना दें, और चाहे तो अत्फे बयान वगैरह बना दें, और चाहे तो आनी के लिए क्या बना दें, मफूल। देखो भाई, लिल वलदिल अजीजी ये क्या है, मुबदल मिनहू, और आगे जियाउद्दीन इसको क्या बनाओ, बदल, मुबदल मिनहू और बदल का इराब एक होता है, तो वो उस पर लाम जारा दाखिल था, मजरूर था, तो जियाउद्दीन ये भी क्या होगा, मजरूर। और आगे यूसुफा वो भी मजरूर है, लेकिन वो गैर मुनसरिफ है भाई, और गैर मुनसरिफ पर कसरा और तनवीन नहीं आते। उसमें दो सबब क्या हैं, एक आलम है और एक उजमा है, आजमी नाम है, समझ में आया। उस जमाने में अभी अरबी जुबान बनी ही नहीं थी जब यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे भाई, तो कैसे पढ़ा, लिल वलदिल अजीजी जियाउद्दीन यूसुफा। और अगर आप इसको क्या बनाएं, आनी के लिए मफूल बनाएं, तो फिर जियाउद्दीन पढ़ेंगे, आनी जियाउद्दीन, और फिर यूसुफा वो मंसूब होगा। तो लिल वलदिल अजीजी जियाउद्दीन यूसुफा। और अगर आप इसको खबर बनाए हुआ महजूफ के लिए, तो फिर कैसे पढ़ेंगे, लिल वलदिल अजीजी जियाउद्दीन यूसुफ। तरीका समझ में आ गया भाई। तो मुसन्निफ ने अपने बेटे का लकब क्या रखा था, जियाउद्दीन भाई, जियाउद्दीन। जिया का माना होता है रोशनी, रोशनी दीन की रोशनी, यानी इनको अल्लाह ऐसा बना दे कि ये रोशनी बन जाएं जिसके अंदर लोग रहनुमाई हासिल करें दीन की तरफ, यानी इनको अल्लाह ऐसी रोशनी बना दे, दीन की रोशनी बना दे जिसके अंदर लोग दीन की तरफ, दीन की तरफ रहनुमाई हासिल करें भाई। तो लिल वलदी, तो मैंने इनको, मैंने इन फवाइद को तकरीर और तहरीर की लड़ी में परोया है, किसके लिए, लिल वलदिल अजीजी अपने महबूब बेटे जियाउद्दीन यूसुफ के लिए। जियाउद्दीन, ये मुल्ला जामी ने ये जो शरह जामी लिखी, मैंने आपको बतलाया था कि ये इन्होंने अपने बेटे जियाउद्दीन यूसुफ के लिए लिखी। जियाउद्दीन बेटे का लकब है और यूसुफ उनका नाम है भाई। हाफिज़हुल्लाह सुबहानहु, अल्लाह सुबहानहु व ताला उनकी हिफाजत फरमाए, अन मुजिबात तलहुफ व तअस्सुफ, तलहुफ और तअस्सुफ के असबाब से, मुजिबात असबाब भाई, असबाब। तलहुफ का माना है भाई रंज और गम, इसी तरह तअस्सुफ का माना भी है रंज और गम। तो बाज़ उलमा फरमाते हैं कि तलहुफ और तअस्सुफ का एक ही माना है, दोनों का माना है गम, दुख, तकलीफ और अफसोस भाई, गम दुख और गम दुख और अफसोस। लेकिन बाज़ उलमा ने फर्क किया है, वो फरमाते हैं कि तलहुफ वो अफसोस और गम है जो किसी काम के करने पर हो, कोई काम किया आपने और बाद में आप अफसोस करते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, तो इसको क्या कहते हैं, इस अफसोस को तलहुफ कहेंगे, इस गम को तलहुफ कहेंगे। और तअसुफ कहते हैं किसी काम के न करने पर जो अफसोस हो, आपको एक काम करना चाहिए था लेकिन आप न कर सके, तो उस काम के छूटने पर आप अफसोस करते हैं, इसको तअसुफ कहते हैं। तो बाज क्या फरमाते हैं, तलहुफ और तअसुफ का एक माना, और बाज फर्क करते हैं कि तलहुफ वो अफसोस और गम जो किसी काम के करने पर हो, और तअसुफ वो गम और अफसोस जो किसी काम के न करने पर हो। भाई तो मुल्ला जामी फरमाते हैं कि मैंने ये किताब लिखी लिल वलदिल अजीज, ये अपने महबूब बेटे जियाउद्दीन यूसुफ के लिए, हाफिज़हुल्लाह सुबहानहु, अल्लाह सुबहानहु व तआला उनकी हिफाजत फरमाए, अन मुजिबाति तलहुफी व तअस्सुफी। मुजिबात का क्या माना, असबाब, गम और अफसोस के असबाब से। अल्लाह गम और अफसोस के असबाब से उनकी हिफाजत फरमाए, गम और अफसोस के असबाब से। इसमें इशारा है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से की तरफ। भाई वहां भी पैगंबर का नाम क्या है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, यहां बेटे का नाम क्या है, यूसुफ है। और नीज वहां पर कुरान में क्या है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनको याद करते थे, और वो फरमा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, या असफा अला यूसुफ, या असफा अला यूसुफ। तो देखो वहां असफा का लफ्ज आया है, तो शारिख जामी भी यहां पर लेकर आए, अतलहुफी व तअस्सुफ। भाई तो इसमें उसकी तरफ इशारा है, गोया मुल्ला जामी ये फरमा रहे हैं कि ए अल्लाह, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपने दीनी और दुनियावी हर एतबार से बड़ा ऊंचा मकाम नसीब फरमाया था, वो पैगंबर भी थे, उनको बादशाहत भी आपने नसीब फरमाई, तो जैसे उनको दीनी और दुनियावी एतबार से ऊंचा मकाम नसीब फरमाया था, इसी तरह मेरा ये बेटा भी उनका हम नाम है, इसको भी ऊंचा मकाम नसीब फरमा, दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी इसको इनको ऊंचा मकाम नसीब फरमा। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन पर तो बड़े गम आए थे, बड़ी तकलीफें आई थीं, और उन वो तो पैगंबर थे, उनमें तो हिम्मत थी उन तकलीफों को बर्दाश्त करने की, लेकिन मेरा ये बेटा बेशक उनका हम नाम, लेकिन ये तो गम और तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐ अल्लाह इसको ऊंचा मकाम भी नसीब फरमाइए और गम और तकालीफ से भी इसकी हिफाजत फरमाइए। भाई वसमैतुहा, और मैंने नाम रखा इन फवाइद का, हा जमीर किसको राजे, फवाइद का, मैंने इन फवाइद का नाम रखा, यानी इन फवाइद को मैंने मौसूम किया, बिल फवाइद जियाइयती, किस नाम से, फवाइद जियाइया के नाम से मैंने मौसूम किया है। यानी याद रखो ये जो शरह जामी है इसका असल नाम यह है फवाइद जियाइया। आपसे कभी तुलबा एक दूसरे से पूछ लेते हैं कभी भाई कि शरह जामी का नाम क्या है, असल किताब का नाम, तो आप ये याद रखना क्या नाम है, अल-फवाइदुज़ज़ियाइया। और देखो अल-फवाइद मौसूफ है और अज़ज़ियाइया उसकी सिफत है, ज़ियाइया उसकी सिफत है, और फवाइद चूंकि जमा है, जमा है, और जमा बतावीले जमातुन किसके हुक्म में, वाहिद मुअन्नस, इसलिए इसकी सिफत देखो अज़ियाइयतु वाहिद मुअन्नस लेकर आए भाई। और ये या निस्बत की है भाई, या निस्बत की है, निस्बत की है। लाहौरीयुन का क्या माना, लाहौर वाला, मुजक्कर हो तो कहेंगे लाहौरीयुन और मुअन्नस हो तो क्या कहेंगे, लाहौरीयतुन। तो यहां पर भी फवाइद चूंकि जमा है तो निस्बत आगे सिफत क्या लाए, वाहिद मुअन्नस अज़ियाइयतु, यानी वो फवाइद, तर्जमा सुनो, अल फवाइदु ज़ियाइया का तर्जमा क्या होगा, वो फवाइद जो मंसूब हैं जियाउद्दीन की तरफ, यूं कहो जियाउद्दीन वाले फवाइद। लाहौरी का क्या माना, लाहौर वाले, तो यहां भी क्या तर्जमा होगा, अल-फवाइदु ज़ियाइया जियाउद्दीन वाले फायदे, यानी वो फायदे जो किसकी तरह मंसूब हैं, जियाउद्दीन की तरह मंसूब हैं, उनकी वजह से, उसकी वजह से मैंने ये फवाइद लिखे हैं। भाई यहां याद रखो ये जो लाहौरीयुन है ना, इसको इसमें मंसूब कहते हैं, तवज्जो है, लाहौरियन को क्या कहते हैं, इसमें मंसूब, इसके आखिर में या निस्बत की है, और मुजक्कर के लिए बगैर ता के और मुअन्नस के लिए ता के साथ लाहौरियतुन कहेंगे, तो ये इसमें मंसूब कहलाता है। और याद रखो ये जो इसमें मंसूब होता है इसके अंदर भी जमीर निकाली जाती है, इसके लिए भी फाइल या नाई फाइल चाहिए, इसके लिए भी जैसे फेल के लिए हमेशा फाइल या नाई फाइल चाहिए, इसी तरह सिफत के सिगों के लिए भी हमेशा क्या चाहिए, फाइल या नाई फाइल चाहिए। तो ये जो इसमें मंसूब है इसके लिए भी हमेशा क्या चाहिए, फाइल या नाई फाइल चाहिए। तो बाज उलमा इसको कहते हैं इसमें मंसूब, तवज्जो से सुनो, इसको क्या कहते हैं, ये लाहौरियन क्या है, इसमें मंसूब, और मंसूबुन कौन सा सीगा है, इसमें मफूल का है, तो इसके लिए वो फिर नाई फाइल इसके अंदर निकालते हैं, लाहौरियन इसमें मंसूब, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महल्लन, इसका नाई फाइल। मसलन मैं कहता हूं अर रजुलुल लाहौरियो, वो आदमी जो लाहौर वाला है, अर रजुलो मरफू अल्लाहौरियो इसमें मंसूब, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महल्लन, इसका नाई फाइल जो किसको राजे रजुल मौसूफ, सिफत को किससे जोड़ते हैं, मौसूफ से, तो वो जो राजे है रजुल मौसूफ की तरफ, इसमें मंसूब अपने नाई फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर फिर जो भी तरकीबें बन रहे हैं मुब्तदा है खबर है जो भी, बतलाना यह चाहता था कि इसमें मंसूब में भी जमीर निकालते हैं, और फिर वो जमीर इसके लिए कभी फाइल बनती है कभी नाई फाइल। बाज उलमा इसको इसमें मंसूब कहते हैं, क्या कहते हैं, और इस मंसूब कौन सा सीगा, इसमें मफूल का, और इसमें मफूल के लिए क्या चाहिए, नाई फाइल, तो जो जमीर निकालेंगे उसको इसका नाई फाइल बनाते हैं। जबकि बाज उलमा इसको इसमें मुंतसिब कहते हैं, इन तसबा यंतसिब, मुंतसिब इसमें फाइल है मंसूब होना, और इसमें फाइल के लिए क्या चाहिए होता, क्या चाहिए होता है, फाइल। तो वो उलमा जो इसको इसमें मुंतसिब कहते हैं कि इसमें मुंतसिब की तावील में है, वो इसके अंदर जो जमीर निकालते हैं वो इसको इसके लिए फाइल बनाते हैं। तो लाहौरियन इसमें मुंतसिब, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महलन, इसका फाइल, और इसमें मुंतसिब अपने फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर सिफत। बात समझ में आ गई। तो ये जो याए निस्बत जिस इसम के आखिर में मिला दी जाए, इसमें दोनों तावीलें आप कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको इसमें मंसूब यानी इसमें मफूल की तावील में ले लें, और फिर इसके अंदर जो जमीर निकालेंगे वो नाई फाइल बनेगी, और अगर आप चाहें तो इसको इसमें मुंतसिब यानी इसमें फाइल के माना में ले लें, और इस सूरत में जो जमीर होगी वो इसके लिए फाइल बनेगी। बहरहाल दोनों सूरतों में ये शिबे जुमला बनेगा, और शिबे जुमला को किसी चीज से जोड़ने के लिए क्या चाहिए, रबत चाहिए, तो इसकी जमीर को उसी चीज की तरफ लौटाएंगे जिसके साथ आप इसको रबत दे रहे हैं। तो कहते हैं वह समय तुहा बिल फवाइद जियाइयती, और इन फवाइद को मैंने मौसूम किया फवाइद जियाइया के नाम के साथ, लि अन्नहु लिहाद अल जमई व तालीफ कल इल्लतिल गाइया, लि अन्नहु क्योंकि ये जो मेरा बेटा है जियाउद्दीन यूसुफ जो है, लिहाज अल जमई व तालीफ वो इस जमा और तालीफ के लिए कल इल्लतिल गाइयती इल्लत गाइया की तरह है, वो किसकी तरह है, इल्लत गाइया की तरह है भाई, इल्लत गाइया की तरह। अच्छा याद रखो जमा और तालीफ दोनों का एक ही माना है, जमा करना, जमा का माना भी मुख्तलिफ चीजों को इकट्ठा करना जमा करना, तालीफ का माना भी मुख्तलिफ चीजों को इकट्ठा करना, लेकिन फर्क यह है जमा के अंदर जो चीजों को इकट्ठा किया जाए उसमें मुनासिबत जरूरी नहीं, चाहे चीजों में मुनासिबत हो या मुनासिबत ना हो, जब उनको आप इकट्ठा कर लें तो कहेंगे जब मैंने इन चीजों को जमा कर लिया, लेकिन तालीफ के अंदर चीजों के अंदर मुनासिबत जरूरी है, अगर बगैर मुनासिबत के चीजों को आपने इकट्ठा किया है उसको तालीफ नहीं कहेंगे, बल्कि मुनासिबत के साथ जमा किया है तो इसको क्या कहेंगे, तालीफ। इसीलिए ये जो मुसन्निफीन किताब लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ये मेरी तालीफ है, क्या है, मेरी तालीफ है, क्योंकि उसमें भी जो चीजें और जो बातें किताब के अंदर मुसन्निफ जमा करता है उनमें मुनासिबत होती है, रबत होता है, बगैर मुनासिबत और बगैर रबत की वो चीजें नहीं होती, उनमें मुनासिबत होती हैं, बगैर मुनासिबत के वो नहीं होती। तो कहते हैं लिअन नहू, हा जमीर राजे है जियाउद्दीन यूसुफ को, इसलिए क्योंकि जियाउद्दीन यूसुफ जो है लिहादल जमई व तालीफ, वो इस जमा और तालीफ के लिए, कौन सी जमा और तालीफ, ये जो मुख्तलिफ फवाइद मैंने जमा किए हैं वो इस जमा और तालीफ के लिए, कल इल्लत गाइयती, वो किसकी तरह है, इल्लत गाइयह की तरह है भाई, इल्लत गाइयह। अब इल्लत गाइयह किसे कहते हैं भाई, ये एक फायदा लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए, ये आपको हर जगह काम आएगा भाई। फलासिफा और हुकमा फरमाते हैं, जल्दी जल्दी लिखिए भाई, फलासिफा और हुकमा फरमाते हैं, फलासिफा और हुकमा फरमाते हैं कि हर मस्नूई चीज, कि हर मस्नूई, मीम स्वाद नून वो आइन और या स्वाद के साथ है, हर के हर मस्नूई चीज के लिए, के हर मस्नूई चीज के लिए चार इल्लतों का होना जरूरी है, चार इल्लतों का होना जरूरी है। नंबर एक इल्लतें मादी, नंबर एक इल्लतें मादी, मीम अलिफ दाल और या, दाल मुशद्दद है, इल्लत मादी। नंबर दो इल्लत सूरी, इल्लत सूरी, स्वाद वो रा या, सूरत से है, सूरत से, इल्लत सूरी जी। नंबर तीन इल्लत फाइली, नंबर तीन इल्लत फाइली, नंबर चार इल्लत गाई, इल्लत गाई, गाईयुन, गाइन अलिफ हमजा और या, गाईयुन, इल्लत गाई, लिख लिया। अब हर एक की तारीफ लिखते जाओ, नीचे लिखो इल्लत मादी, मा बिही शय ओ, मा बिही अशय ओ, बिलकुवती, बिलकुवती बोलता है आखिर में, मा बिही शय ओ बिलकुवती, यानी वो चीज, यानी वो चीज जिससे कोई शय, यानी वो चीज जिससे कोई शय बिलकुवह बनती है, बिलकुवह बनती है, बिलकुवह। भाई आपने दो अलिफ लिखे हैं, एक अलिफ लिखो बा अलिफ, ये अलकुवा का जो अलिफ है इसी इसी के साथ तो बा जुड़ी है, ये एक अलिफ जायद लिख दिया आपने, ये बाज के, हां ये बा के साथ अलिफ, अलिफ लाम वाला अलिफ बा के साथ जुड़ गया। तो क्या लिखी तारीफ, इल्लत मादी, मा बिही शय ओ बिलकुवती, यानी वो चीज जिससे कोई शय बिलकुवह बनती है, जैसे मिट्टी घड़े के लिए, जैसे मिट्टी घड़े के लिए, या लकड़ी, या लकड़ी कुर्सी के लिए, या लकड़ी कुर्सी के लिए। नंबर दो इल्लत सूरी, नंबर दो इल्लत सूरी, मा बिही शय उ बिलफ़िअली, मा बिही शय उ, मा बिही अशय उ बिलफ़िअली, बिलफ़िअली यानी वो शकल, यानी वो शकल जिससे बिलफ़िअल, जिससे बिलफ़िअल कोई शय पाई जाती है, कोई शय पाई जाती है, यानी वो शक्ल जिससे बिलफ़िअल कोई शय पाई जाती है, जैसे घड़े की और कुर्सी की सूरत, जैसे घड़े की और कुर्सी की सूरत। नंबर तीन इल्लत फाइली, نمبر تین علت فاعلی، نمبر تین علت فاعلی، ما بہ وجود الشیء، ما بہ وجود الشیء، ما بہ وجود الشیء، فی الواقع، ما بہ وجود الشیء فی الواقع والخارج، فی الواقع، فی الواقع والخارج. لکھ لیا علت فاعلی ما بہ وجود الشیء فی الواقع والخارج، یعنی وہ کاریگر جو کسی شے کو، یعنی وہ کاریگر جو کسی شے کو خارج میں وجود دے، خارج میں وجود دے، جیسے جیسے کمہار، کاف میم ہا الف را، کمہار اور ترخان بئی، جیسے کمہار اور ترخان بئی، بھائی جو گھڑا بناتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کمہار، اور جو کرسی وغیرہ بنائے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترخان کہتے ہیں. نمبر چار علت غائبی، غائیون، نمبر چار علت غائیون، ما لأجلہ، ما لأجلہ، صنع، صاد نون عین، ما لأجلہ صنع الشیء، الشیء. لکھ لیا علت غائی، ما لأجلہ صنع الشیء، یعنی وہ مقصد، یعنی وہ مقصد جس کے لیے کوئی چیز بنائی جائے، یعنی وہ مقصد جس کے لیے کوئی چیز بنائی جائے. جیسے گھڑے کے لیے علت غائی، جیسے گھڑے کے لیے علت غائی، جیسے گھڑے کے لیے علت غائی، اس میں پانی کو جمع کرنا، اس میں پانی کو جمع کرنا اور محفوظ کرنا ہے، اور محفوظ کرنا ہے، اور کرسی کی علت غائی اس پر بیٹھنا ہے، اور کرسی کی علت غائی اس پر بیٹھنا ہے. لکھ لیا بھائی، دیکھیے اب اس کو سمجھ لیں. میں نے آپ کو بتلایا کہ فلاسفہ اور حکما فرماتے ہیں کہ ہر مصنوعی چیز، مصنوعی چیز جس کو جس کے بنانے میں انسان کا عمل دخل ہو، مصنوعی چیز کسے کہتے ہیں؟ کہ بنانے میں انسان کا عمل دخل ہو. جیسے دیکھو یہ کتاب ہے، اس کو انسان نے بنایا ہے، گلاس ہے انسان نے بنایا ہے، لیکن پتھر ہے وہ مصنوعی نہیں. بات سمجھ؟ تو مصنوعی وہ چیز جس کے بنانے میں انسان کا عمل دخل ہو. تو ہر مصنوعی چیز کے لیے حکما اور فلاسفہ فرماتے ہیں چار علتوں کا ہونا ضروری. ایک علت مادی، علت مادی جس کے ذریعے کوئی چیز بالقوہ بنتی ہے، یعنی یوں کہ اس چیز کا میٹیریل جس سے وہ چیز بنے گی. گھڑا کس سے بنا؟ مٹی سے. کرسی کس سے بنی؟ لکڑی سے. تو یہ گھڑے کے لیے مٹی، یہ علت مادی ہے، یہ اس کا مادہ ہے، اسے یہ بنا ہے. اور کرسی کے لیے لکڑی کیا ہے؟ علت مادی. پھر اس کے لیے ایک علت سوری ہوتی ہے، وہ صورت ہے تو وہ چیز ہے، وہ صورت نہیں تو وہ چیز بھی نہیں. کرسی کی دیکھو ایک خاص شکل ہے، یہ شکل ہے تو کرسی ہے، یہ شکل نہیں تو کرسی نہیں. گھڑے کی ایک خاص صورت ہے، یہ صورت ہے تو گھڑے کا وجود ہے، یہ صورت نہیں تو گھڑے کا وجود بھی نہیں. تو اس کو علت سوری کہتے ہیں، یعنی جس کی وجہ سے ایک چیز جو ہے بالفعل پائی جاتی ہے. اور علت فاعلی یعنی اس کو کوئی بنانے والا چاہیے، وہ کاریگر جو اس کو بناتا ہے. گھڑے کو کون بناتا ہے؟ کمہار. اور کرسی کو کون بناتا ہے؟ ترخان. تو یہ کیا ہے؟ علت فاعلی ہیں. اور علت غائی، وہ مقصد جس کے لیے وہ چیز بنائی جائے. گھڑا کس لیے بنایا گیا؟ پانی جمع کرنے اور محفوظ کرنے کے لیے. کرسی کس لیے بنائی گئی؟ بیٹھنے کے لیے. تو یہ ان کی علت غائی ہے. تو ہر مصنوعی چیز کے لیے چار علتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے مادہ بھی چاہیے، صورت بھی چاہیے، بنانے والا بھی چاہیے، اور کوئی مقصد بھی چاہیے. تو یہ تفصیل تھی بھائی. اب یہاں کتاب میں آیا لانه لهذا الجمع والتاليف كل علة الغائيه, کیونکہ وہ ضیاء الدین جو ہے وہ ان فوائد کے جمع اور تالیف کے لیے علت غائی جیسا ہے, علت غائی جیسا ہے. مصنف نے یہ نہیں کہا کہ وہ علت غائی ہے بلکہ علت غائی جیسا ہے. بھائی کیوں؟ وجہ یہ کہ علت غائی اس مقصد کا نام ہے جس کے لیے کوئی چیز بنائی جائے. کرسی پر مقصد کیا ہے؟ بیٹھنا. اور یاد رکھو یہ جو علت غائی ہوتی ہے یہ سب سے آخر میں پائی جاتی ہے. جب کرسی بنے گی تو اس پر بیٹھیں گے نا, اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں. ذہن میں تو وجود ہے, واقع میں اس کا وجود نہیں ہے. اور ضیاء الدین جس کے لیے یہ فوائد جمع کیے, وہ ان فوائد کے بعد اس کا وجود ہوا یا فوائد سے پہلے بھی اس کا وجود تھا؟ پہلے بھی وجود تھا, تو وہ علت غائی تو نہیں. ہاں علت غائی جیسا ہے. جیسے علت غائی کیا؟ وہ مقصد ہوتا ہے جس کے لیے ایک چیز بنائی جائے. تو ضیاء الدین بھی مقصود تھا اس کے لیے, اس کو تعلیم دینے کے لیے کیا کی گئی؟ یہ کتاب لکھی گئی. تو وہ علت غائی نہیں ہے, کیونکہ علت غائی تو وجود میں سب سے مؤخر ہوتی ہے, اور ضیاء الدین تو سب سے مؤخر نہیں, اس کا تو وجود پہلے سے ہی ہے. تو وہ علت غائی نہیں بلکہ علت غائی جیسا ہے. تو اصل علت غائی کیا تھی اس فوائد کے لکھنے کی؟ تاکہ اس سے اس کو تعلیم دی جائے, اس کو یہ سکھائے جائیں. بھائی تو اصل علت غائی یہ ہے. تو ضیاء الدین علت غائی نہیں, ہاں وہ علت غائی جیسا ہے, اسی کے لیے یہ فوائد لکھے گئے. بھائی تو کہتے ہیں نفعہ اللہ تعالی بہا, اللہ تعالی فائدہ دے. نفعہ ہا ضمیر پھر ضیاء الدین یوسف کو راجے. نفعہ اللہ, اللہ ضیاء الدین یوسف کو فائدہ دے. بہا ان فوائد کے ذریعے. وسائر المبتدئین, اور باقی یا تمام ابتدا کرنے والوں کو بھی. سائر کا معنی تمام کے بھی آتے ہیں اور سائر کا معنی باقی کے بھی آتے ہیں, تو جو بھی مناسب ترجمہ آپ سمجھیں آپ کر سکتے ہیں. اللہ اس کے ذریعے ضیاء الدین کو بھی فائدہ دے اور باقی مبتدی طلباء کو بھی فائدہ دے. من اصحاب التحصیل, وہ مبتدی من اصحاب التحصیل جو تحصیل علم کرنے والوں میں سے ہیں. وہ مبتدی جو کس میں سے ہیں؟ بھائی مبتدی تو کاریگری, کوئی کاریگری سیکھنے لگتا ہے تو وہ بھی تو مبتدی ہے. تو بتلا رہے ہیں کہ ہر مبتدی, ہر کام کا مبتدی یہاں نہیں مراد, بلکہ اصحاب تحصیل یعنی جو علم حاصل کرنے والے مبتدی ہیں یعنی طلبہ مراد ہیں, ان کو اللہ ان فوائد کے ذریعے فائدہ دے. تو نفعہ اللہ تعالی بہا, اللہ ضیاء الدین کو بھی فائدہ دے ان کے ذریعے. وسائر المبتدئین من اصحاب التحصیل, اور تمام مبتدی طلباء جو ہیں علم حاصل کرنے والے ان کو بھی فائدہ دے. وما توفیقی الا باللہ, اور نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ کے ساتھ, یعنی مجھے اللہ ہی توفیق دینے والے ہیں. یہ جو میں نے لکھا کتاب لکھی, یہ اس پر میں کوئی تکبر نہیں کرتا, یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ مجھے کس نے توفیق دی؟ اللہ نے توفیق دی. یہ میں نے کتاب اللہ کی توفیق سے ہی لکھی ہے. وَهُوَ حَسْبِي, اور اللہ میرے لیے کافی ہیں. وَنِعْمَ الْوَكِيلُ, اور اللہ بہترین کارساز ہیں. اللہ بہترین کارساز ہیں. کیا معنی کارساز؟ کام بنانے والے ہیں. اللہ بہترین کام بنانے والے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.